ओम शांति। हम सभी मणिनगर सब जोन की टीचर्स आदरणीय भाई साहब का एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर टॉपिक लेकर भाई साहब हमारे बीच में आए हैं, स्वस्थ तन और खुशनुमा मन। तो भाई साहब के लिए कुछ शब्द लिखे हैं। दिल के दर्द को बिना चिर फाड़ मिटा देते हैं, योग से जीवन में खुशियां खिला देते हैं, स्वस्थ तन और खुशनुमा मन का देते हैं संदेश आप, दुआओं से बढ़कर विश्वास का दीप जलाते हैं, प्रेम और शांति से रोगी का जीवन सवार देते हैं। ऐसे आदरणीय भाई साहब जिन्होंने हजारों हार्ट पेशेंट्स को ठीक किया है, तो हमें भी आज सुंदर टिप्स देंगे कि कैसे हम आगे अपना स्वास्थ्य ध्यान रखें, प्रिकॉशंस रखें और साथ ही साथ हमारा मन खुशनुमा रहे। आदरणीय भाई साहब।
ओम शांति। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मैंने किसी को ठीक नहीं किया है, स्वयं सबने पुरुषार्थ करके अपने आप को ठीक किया है। जिसने जितना लगन से फॉलो किया है बाबा की श्रीमत को, नियम मर्यादाओं को, उतना वो स्वस्थ हुए। क्योंकि कोई भगवान भी चाहे, शिव बाबा भी चाहे हमको ठीक कर दे, हमें ठीक कर दे, हमें स्वस्थ बना दे, वो भी बना नहीं सकता। बना सकता शिव बाबा हमको स्वस्थ? शिव बाबा चाहे हमसे जितने बच्चे हैं सबको ठीक कर दो, कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप क्या समझते हैं? नहीं कर सकता है। चलिए एक मिनट हम साइलेंस में चलते, दोबारा से इस देह और देह की दुनिया से अपने मन बुद्धि को डिटैच कर लीजिए। मैं अशरीरी आत्मा परम धाम घर में उस पावर हाउस सदा अशरीरी निराकारी बीज रूप बाप से कंबाइंड हूं, उस पावर हाउस से कंबाइंड हो जाऊं सर्व संबंधों के महीन सार वाली आपके साथ। बाबा ही मेरा संसार है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। ओम शांति। आप सभी बाबा के चुने हुए रतन हैं, आदरणीय टीचर बहने हैं। आप सब योग की विधि तो जानते ही हैं, तो आज मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा कि अगर हमें अपने तन को स्वस्थ बनाना है और अपने मन को सदा खुशनुमा बनाना है, क्योंकि आने वाली दुनिया सत्युग जो है उसमें हमारा पहला स्लोगन पता है कौन सा है? एवर हेल्दी। एवर हेल्दी है या कुछ और है? सत्युग आने वाली दुनिया में हम सदा स्वस्थ हैं, एवर हेल्दी में सदा स्वस्थ हैं और सदा समृद्ध भी हैं, एवर हेल्दी भी हैं और सदा एवर हैप्पी, सदा खुश भी हैं, कभी कभी नहीं सदा है। तो वो हम सत्युग में जाके बनेंगे, अभी बनेंगे। जैसे सर्वगुण संपन्न हमको यहां बनना है कि वहां बनना है? कहां बनना है? यहां बनना है, वहां बनना है? वहां हमको गुण चाहिएंगे नहीं, शक्तियां चाहिए, वहां पर सहन करना पड़ेगा, समाना पड़ेगा। वहां पर सहनशीलता चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। सत्युग में सहनशीलता चाहिए? क्या सहन करेंगे? कुछ भी नहीं करना। वहां एकाग्रता चाहिए? वहां एकाग्रता चाहिए सत्युग में? चाहिए नहीं, है ना? तो वहां तो चाहिए नहीं, ये तो यहां चाहिए ना। इससे सदा स्वस्थ हमको यहां बनना है, सदा खुश हमें यहां रहना है, राइट? इससे पहले कि मैं आपसे इस विधि को चिंतन करें, पहले तो स्वस्थ शब्द का मतलब क्या होता है? स्वस्थ माना? यस, एनीवन? आप में से कोई पता है स्वस्थ माना? बोलिए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? तन से निरोगी। पर स्वस्थ शब्द का मतलब अर्थ क्या है? स्व माने आत्मा, अस्थमना स्थित, जो आत्मिक स्थिति में स्थित है वो सदा वो स्वस्थ है, और जो सदा आत्मिक स्थिति में स्थित है वो सदा स्वस्थ है। पर आत्मिक स्थिति में स्वस्थ स्थित रहना सहज बात है, सहज बात है मुश्किल बात? देखिए मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। एक सेठ का बच्चा है, वो अपने बचपन में ही माता पिता से बिछुड़ जाता है 2 साल की उम्र में, राइट। अब उसको चोरों के हाथ में पड़ जाता है, जेब काटने वाले होते हैं उनके हाथ में पड़ जाता है। उसको बचपन से क्या करते हैं, जेब काटना सिखा देते हैं, चोरी करना सिखा देते हैं, राइट। अब वो माता पिता को जानता नहीं है, तो जेब काटता है, चोरी करता है, बाल सुधार गृह में भी पकड़ा जाता है तो वहां रख देते हैं पुलिस वाले, फिर काटता है, बड़ा हो जाता है, माँ बाप को ढूंढता तो है, उसके माँ बाप भी ढूंढ रहे हैं उसको, कि तू वो क्या अपने को सेठ का बच्चा कह सकता है? अपने को सेठ कह सकता है तो सेठ का बच्चा, पर अपने को सेठ कह सकता है? नहीं कह सकता। एक दिन वो बच्चा मतलब ट्रेन में बैठ के अपने ही शहर में पहुंच जाता है जहां उसके माँ बाप रहते थे। कई दिन से भूखा है, कोई उसको शहर में जाता है, उसके बाप का घर सबसे बड़ा है, उसको पता नहीं मेरे बाप का घर है, जाके भीख मांगता है कि मैं 3-4 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो एक नौकर आता है बाहर, नौकर उससे कहता भाग जाए यहां से, कोई खाने को नहीं मिलेगा। फिर दूसरा नौकर आता है, फिर भी खड़ा रहता है, क्योंकि शहर का सबसे बड़ा घर है वो, तो उसने कोई तो खाने को देगा। दूसरा नौकर भी भगाता है उसको, फिर भी खड़ा रहता है। अचानक उसकी माँ को, तो बच्चा था ना बहुत बड़ी उम्र में पैदा हुआ था बच्चा, 40 साल की उम्र के बाद पैदा हुआ था, बहुत इसने कामनाएं करते ना, तो तब उसको बच्चा हुआ पैदा हुआ, और वो खो गया मेले में, कुंभ के मेले में खो गया था। अब वो हर साल उसका जन्मदिन मनाती है, उसको पता है जिंदा तो है, कहाँ है पता नहीं। बचपन का उसका निशान है एक बाएं बाजू पे, उसकी यहाँ से शर्ट फटी हुई थी, कपड़े गंदे थे, मुंह गंदा था, बाल ऐसे ही थे, कई दिन से नहाया भी नहीं था, गंदा सा बच्चा था बिल्कुल। पर उसकी माँ को जैसे बाहर आती है ना, वो बोलने को बच्चा होता है किंतु उसकी माँ की नज़र उसके फटे हुए बाजू की तरफ जाती है, वहाँ एक बचपन का निशान है, निशान देखते वो क्या करती है, वो तो उसके हर साल कपड़े बनवाती है कि मेरा बच्चा अभी 10 साल का हो गया, 9 साल का हो गया, अभी 10 साल, अभी 11 साल, 12 साल का हो गया, हर साल कपड़े बनवाती, कभी तो मेरा बच्चा आएगा। और जैसे उसको देखती है, निशान को देखती, क्या करती है, उसको गले लगा लेती है और क्या बोलने लगते हैं, मेरा बच्चा मिल गया, मेरा बच्चा मिल गया। और उसको जाके अंदर ले जाती है, नहलाती है, कपड़े बदलती है, और उसको क्या करती है, कपड़े तो उसके पास हैं, अच्छे से कॉम करके तैयार करके फिर उसके बाप को कहती है, देखो हमारा बच्चा मिल गया। बोलते क्या कहती हो, कैसे हमारा बच्चा? कहते हैं देखो इसका निशान देखो ना, बचपन का निशान है। तो तब उसको, अब वो क्या करता है, बाप उसको गोदी में उठाता है, उठा के गोदी के बाहर बैठक में आके बैठता है, ड्राइंग रूम में सब नौकरों को बुलाता है, क्या बोलता है उसको, अब कौन है ये, तुम्हारा सेठ है, तुम्हारा छोटा सेठ है, छोटा मालिक है ना। पर सेठ बनने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, जब तक माँ बाप उसको अडॉप्ट ना करें, उसको अपना ना बनाएं, माँ बाप की गोद में ना बैठे, तब तक वो अपने को सेठ कह सकता है? ऐसे अपने को आत्मा कहना भी बहुत बड़ी बात है, आत्मा समझना छोटी बात नहीं है। खाली मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं करने से हम आत्मिक स्थिति में टिक नहीं सकते, टिक सकते हैं? नहीं टिक सकते। कब टिक सकते हैं? जब निरंतर बाप की गोद में बैठे हो, निरंतर बाप से सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद हो, सर्व संबंधों के महीन सार वाली, बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरा सब कुछ है, एक बल एक भरोसे की स्थिति ना हो, तब तक बाबा हमारा, तब तक हम आत्मा, क्योंकि आत्मा में 7 गुण है ना, आत्मा 7 गुण से भरपूर है तो अपने को आत्मा कह सकते। अभी कितने साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, अभी भी आत्मिक स्थिति अपने को जब योग करने बैठते क्या करते हैं, कोशिश करते ना कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा के संतान हूं, नहीं बार बार याद दिलाते नहीं दिलाते, जिनको ऑटोमेटिक हो गए बात उठाओ, जिनको ऑटोमेटिक चलते फिरते बस मैं आत्मा हूं परमात्मा से कंबाइंड हूं, सदा ये स्थिति रहती है, सदा आत्मा नहीं रहते, वहां दुष्टो। ऐसा कोई बना अभी तक? बना कोई? कोई बना नहीं अभी। तो एक ही तरीका है संगम पर, अगर मैं निरंतर बाप से कंबाइंड रहूं निरंतर, तो ही हम बाबा से, तो ही हम अपने को आत्मा चलते फिरते आत्मा अनुभव कर सकते। और कोई विधि ही नहीं जिससे हम अपने को आत्मा अनुभव कर सके। चलिए मैं इस पे एक मिनट कर लें, ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है। ओम शांति। चलिए मैं दो अनुभव आपसे शेयर करना चाहूंगा, पहले इससे पहले कि मैं आपको इसकी विधि के बारे में डिस्कस करें, हम सदा स्वस्थ और सदा खुशनुमा कैसे रह सकते हैं। पहला मैं आपका अनुभव शेयर करूंगा कि मेरे को जब मैं ज्ञान में आया ना, तो उस समय मुझे, मैंने जिस दिन से समझा, हालांकि हमारे घर में गीता पाठशाला थी बचपन से, जब मैं 9 साल का था, हमारे माता पिता ज्ञान में चलते थे बचपन से, हम पांडव दिल्ली में जाते थे, दादियों दीदियों से, दीदी से मिले थे, दादियों से मिलते थे, कृष्णा दीदी थी हमारी हिरनगर वाली, तो हमको लेके जाती थी, मतलब हमको मिलाती थी दादियों से, जब पांडव वन में प्रोग्राम दादियां आती थी ना, तो मिलते थे। पर कभी शौक था टोली खाने का, गुरुवार का और सब सेंटर सब प्रोग्राम्स में जाने का, प्रभात फेरी में जाने का, फिर MBBS किया तो हम भूल गए सब कुछ, फिर कॉलेज में चले गए, वहाँ हॉस्टल में रहे सब भूल गए। फिर 1986 में दोबारा से, जब शुद्ध जिस दिन मैं पहचान गया दोबारा से, मैं एम्स में था दिल्ली में, उस समय वापस हम ज्ञान में चले। पर जिस दिन समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा सात चैतन्य आदमी ऊर्जाओं का पुंज है और आत्मा शरीर को चलाती है और परमात्मा सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पावर हाउस है, तो उस दिन समझ आ गया। और ब्रह्म मुहूर्त ही समय है जिस समय हम आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, बहुत पावरफुल स्थिति का अनुभव होना चाहिए, मुरली कभी मिस नहीं करनी। इस समझ में आ गया मुरली क्यों सुननी चाहिए, क्योंकि आत्मा मन के द्वारा, आत्मा के पास जो एनर्जी है, आत्मा मन के माध्यम से ही शरीर को दे सकती है। और मन क्या है, मन क्या है, मन क्या है, हैं जी, सोचने की शक्ति। मन के चार एस्पेक्ट हैं, अंग्रेजी में कहते हैं टीम, थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, संकल्प भावनाएं वृत्ति और स्मृति। तो जो भी आत्मा को देना है ना शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को, वो संकल्पों के द्वारा ही दे सकती है, भावनाओं के द्वारा दे सकती है, वृत्ति और दृष्टि के द्वारा दे सकती है, वायुमंडल के द्वारा दे सकती है और स्मृति के द्वारा दे सकती है, राइट। तो ये मुझे समझ में आ गया था कि मन के द्वारा एनर्जी बॉडी में जाती है। किंतु अगर मेरी टीम नेगेटिव है, आज प्रॉब्लम कहाँ है, हम बीमार क्यों होते हैं, हमारा मन उदास क्यों होता है, दुखी क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा मन में जो अभी सारे पाप कर्म कहाँ रिकॉर्ड हुए, कहाँ रिकॉर्ड हुए बताओ, मन के अंदर रिकॉर्ड हुए, स्मृतियों में रिकॉर्ड हो गए, संस्कार बन गए, आदत बन गई। तो द्वापर युग से जो भी हमने कर किया, देह अभिमान के वश, देह अभिमान के संबंध संपर्क के वश, देह अभिमान के पदार्थों के वश, और देह अभिमान से पैदा हुए 5 आसुरी स्वभाव, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश, जो भी हमने कर्म किए और इन 5 विकारों के वश होकर जो भी हमने कर्म किए, उससे हमारे अंदर कुछ आसुरी आदतें बन गई, आलस्य, अलबेलापन, दूसरों के दोष दर्शन, बदला दोष दर्शन माना, एक तो हंस होता है ना, वो क्या देखता है, उसको बहुत सारे कंकड़ पड़े तो मोती नजर आते हैं, दो मोती मोती नजर आएंगे, और एक होता है बगला, बगले के सामने 1000 मोती पड़े हों, उसके बीच में 2 कीड़े पड़े हों, उसको क्या नजर आएगा, मोती नजर नहीं आते, क्या नजर आता है, सिर्फ कीड़े, मोती नजर नहीं। तो ऐसे जब हम सोल कॉन्शियस थे सत्यिक त्रेता में, तो हमको सिर्फ गुण नजर आते थे सबके, और गुणों में व्यवहार था। जैसे द्वापर युग आया तो हम क्या बन गए, बगले बन गए। अभी सामने वाले में गुण तो बहुत हैं, कि तो हमको क्या नजर आते, कीड़े नजर आते, मतलब अवगुण ही दिखाई देते हैं। जब तक मेरे अंदर अवगुण नजर आ रहे हैं ना, मुझे दूसरों को अवगुण नजर आ रहे हैं, तो अभी तक मैं क्यों नहीं बनाऊं, मैं पवित्र नहीं हूं। तो आलस्य अलबेलापन, आलस्य अलबेलापन भी अपवित्रता है, किसी के अवगुण देखना भी अपवित्रता है, किसी के प्रति बदला लेने की भावना रखना भी है, पर कोई गलत कर रहा है ना, कोई अपने को क्रोध कर रहा है, तो हमें क्या आना चाहिए? वापस क्रोध आना चाहिए? आना चाहिए। कोई अपने को मिट्टी का तेल डाल के जला रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको देख के अपने ऊपर भी मिट्टी का तेल डाल के जला लेना चाहिए। किसी को क्रोध करके देखना तो ऐसे ही ना, उसने क्रोध किया मैंने भी क्रोध कर दिया। तो क्रोध करना पे रहम आना चाहिए, क्रोध करने वाले पे रहम आना चाहिए। नहीं आता रहम कि बेचारे देखो कैसे अपने को जला रहा है, रहम आना चाहिए उसके प्रति। उधर के उसके प्रति बदलने की भावना करना आ जाना, ये अपवित्रता है। किसी के प्रति संशय रखना ये बदलेगा नहीं या बदलेगी नहीं, ये भी अपवित्रता है, राइट। किसी के प्रति अनुमान लगाना, पता नहीं ये गलत करता है, इसने ऐसा किया हुआ, ये भी अपवित्रता है। चिंता करना भी अपवित्रता है, राइट। भगवान मिला है, विश्व का मालिक ऑलमाइटी अथॉरिटी हमको मिली है, वो हमें अपना बना लिया उसने, और फिर भी हम चिंता कर रहे हैं क्या होगा कैसे होगा, ये भी अपवित्रता है। डरना भी अपवित्रता है, जल्दबाजी करना भी अपवित्रता है। टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, जैसे मैं वो ऐसे ही होना चाहिए, ये भी अपवित्रता है। किसी से कंपटीशन करना भी अपवित्रता है, और ईर्ष्या द्वेष करना भी अपवित्रता है। तो ये कहां देवभान देवीमान देवीमान का संबंध संपर्क पदार्थ और पांच आसुरी स्वभाव और दस मोटे मोटे संस्कार हैं, तो बहुत सारे सौ हैं, पर दस मोटे मोटे संस्कार पकड़ लो ना, तो ये आदतें पड़ गई हैं, ये सारी अपवित्रता है। तो मुझे याद आता है जब मैं चला शुरू, अमृत चला शुरू किया, मुर्दी सुननी शुरू की, बहुत लगन से शुरू की। मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर सेंटर था दिल्ली में, फिर भी मैं रेगुलर जाता था, कभी मिस नहीं करता था, उससे मुझे बहुत फायदा होता था। फिर भी मुझे सूक्ष्म वतन का अनुभव नहीं होता था। टीचर मैंने जब संदेशी आते ना, संदेशी गुरुवार को भोग लगाती थी, 7 मिनट 2 गीत बजेंगे ऊपर, 2 मिनट 7 मिनट के लिए ऊपर जाएंगी, और फिर 15 मिनट संदेश सुनाएंगे, और फिर आधा घंटा बैठ के भाई बहनों को भी संदेश सुनाएंगे। सोचते बहने कैसे संदेश आधा घंटा सुना देती हैं, पौना घंटा सुना देती हैं, क्या सुनाती हैं, कैसे सुनाती हैं। 7 मिनट तो ऊपर गई, 1 मिनट जाने जाने में लगा होगा, 5 मिनट ऊपर रही होगी, तो कैसे संदेश सुनाएगी। तो मेरे को बड़ा कन्फ्यूजन होता था। तो फिर मेरे एक दिन क्या हुआ, मैं जब माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल का उद्घाटन था ना 24 अक्टूबर 1991 को, तो उस दिन मुझे उस मैं वहां पर मुझे बुलाया था कि भी आप आना, हालांकि मेरा मैं को ज्वाइन करना था, पर ज्वाइन नहीं कर पा रहा था किसी कारणवश, घर में कुछ समस्या थी लौकिक। तो फिर भी कहा अपने भाई ने 15 दिन के लिए तो आ जाओ कम से कम, शुरू शुरू में तो आप उनको लीक करो ताकि हमारा अच्छा होगा। तो मैं आ गया, और 29 तारीख को मुझे पेट में दर्द हुआ पांडवन से आते हुए बाहर। हम ज्ञान विज्ञान में हुआ ना पास में, वहीं ठहरे थे रूम नंबर 6 में। तो मुझे पांडवन से बाहर निकलते तो बहुत जोर से पेट में दर्द हो गया। तो मैं समझ तो गया मुझे क्या हुआ है, कमरे में गया, फिर वॉमिटिंग हुई, पेट में दर्द हुआ। शाम को 4 बजे फिर मुझे बुलाने के लिए आया कि पेशेंट बैठे हैं आपके लिए हॉस्पिटल में। तो मैं देखा मेरा पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तभी वो डॉक्टर प्रताप मिड्डा को और लोगों को बताया कि वहाँ पे ऐसा है, तो वो लोग आए, दवाइयाँ दी, दवाई से फ़ायदा नहीं हुआ। एक्चुअली मुझे अपेंडिसाइटिस हुआ था जोर से, उस माउंट आबू में अपेंडिस ऑपरेशन की सुविधा नहीं थी, तो रात को दवाइयाँ वही देने कुछ हुआ नहीं, मतलब मेरी दर्द ठीक नहीं हुआ, तो अपेंडिक्स फट ना जाए, तो उन्होंने सोचा कि इनको एंटीबायोटिक दे देते हैं। टेस्ट वेस्ट लगाया, मुझे कुछ नहीं हुआ। जैसे टोटल डोज दे रहे थे साथ में, प्रताप भाई यहाँ साथ बैठे थे, तो मेरा सांस घुटने लगा, पसीना आ गया जोर से, और पसीना आया और मैं लगा सांस घुट रहा है, मैंने हाथ यहाँ पे था, मैंने कहा प्रताप भाई मैं तो ऊपर मैं तो जा रहा हूँ, ऐसे बोला, मैं सांस घुटा हुआ था, मैंने ऐसे बोला बस मैं जा रहा हूँ, और मैं छत के पास पहुंच गया। एक बॉडी मैंने बेड पे पड़ी देखी, ये जो शरीर था ना एक बॉडी, ये देखी स्थूल बॉडी बेड पे पड़ी हुई थी, यहाँ डॉक्टर बैठा था एक, यहाँ इंजेक्शन लगा रहा था, आसपास 3-4 डॉक्टर नर्सेस थे, सब घबराए हुए थे। मैं देखो ऊपर से, फिर मैं उपराम था बेड उसकी छत के पास पहुंच गया, दरवाजा भी खुला था, खिड़की भी खुली थी, किंतु मैं छत के अंदर से निकल गया। उसके ऊपर एक छत और थी, वो मुझे फील नहीं हुई, मुझे पता नहीं वो कैसे गया, मैं आसमान में जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। और फिर सामने बाबा को देखा, बाबा को, सरकार बाबा को देखा, बाबा ने मुझे देखा संकल्पों से कैसे बातचीत होती है, कैसे बातचीत होती, कैसे बाबा कैसे बात करते हैं। तो मुझे बाबा ने ऐसे किया, हाथ से इशारा किया, तो मुझे लगा बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा बाबा मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैंने भी मुंह से नहीं बोला, संकल्प से ही बोला, क्योंकि मेरे साथ एक बॉडी थी मेरे पास, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉडी थी, वाइट नहीं थी, ट्रांसपेरेंट बॉडी थी। ट्रांसपेरेंट समझते ना, जैसे कांच के बनी होते, ट्रांसपेरेंट कांच की बनी हुई बॉडी, और मुझे फील हो रही है उसमें आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, ऐसा सब कुछ फील हो रहा है मेरे साथ, पैर भी हैं, और मुझे फील हो रहा है मैं जैसे बाबा के सामने। मैंने ऐसे संकल्पों से जैसे बातचीत करते हैं, मैंने कहा बाबा मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो बाबा ने कहा बच्चे, बाबा ने भी कुछ मुख से नहीं बोला, पर मुझे लगा कि बाबा से मुझे ऐसे, बाबा मुझे कह रहे बच्चे तुम्हारा समय नहीं हुआ, मैं भी बहुत सेवा करनी, वापस जाऊँ। और मैं अपनी बॉडी में आ गया, मैं कोई नमस्ते नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी और कोई बात ही नहीं, टू द पॉइंट है ना, बात हुई और मैं नीचे अपनी बॉडी में आ गया। उसमें बॉडी में हार्ट बहुत तेजी से धर धर कर रहा था, बहुत फास्ट बीटिंग कर रहा था। तो वो मुझे पहला महसूस हुआ कि सूक्ष्म वतन क्या है। प्रैक्टिकल मतलब एक बॉडी ये है स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और है बिल्कुल इसके जैसा, और बाबा कैसा है, बाबा ऊपर है सूक्ष्म वतन में, और कैसे बाबा से संकल्पों से बातचीत, इशारे से बातचीत कैसे होती है, कहते हैं संकल्पों की भाषा, भावना की भाषा और नैनों की भाषा, इशारों की भाषा कैसे होती है। उसके बाद तो मुझे थोड़ी गिफ्ट मिल गई सूक्ष्म वतन में जाने की, संदेश ही नहीं बना बट ऐसे कि तो संदेशी का तो अलग पार्ट होता है ना, उसको वरदान होता है, ये बात हुई। फिर मेरे को क्या हुआ, मैं 95 में उसकी कहानी लंबी है उसमें नहीं जाता हूं, बाबा ने कैसे अनुभव कराया दिल्ली के एक हार्ट हॉस्पिटल में कार्य करते हुए, कि कैसे हम एंजियोप्लास्टिक बाईपास करके भेजते हैं फिर बंद हो जाती है, फिर डॉक्टर को हम लोग कहते दोबारा करा लो, पेशेंट बोलता कि डॉक्टर साहब मैंने हमने एंजियोप्लास्टिक कराई थी, घर बेच के कराई, बाईपास कराया घर बेच के, अब क्या हम क्या बेचें। तो मुझे बहुत फील होता था क्योंकि मैंने IAS भी किया, पता आपको मैंने MBBS करने के बाद IAS भी पास किया था, पर IAS ज्वाइन नहीं करने दिया पिताजी ने, कहा नहीं बेटा नहीं जाओ अपने जाओ, नहीं गया फिर। तो फिर मेरे को तब मैंने साइकोलॉजी पढ़ी थी MBBS करने के बाद डिटेल में, तो फिर जो है मुझे जब ये मुझे लगता था ये लोग बीमारी का कारण क्या होता है, तब मुझे पता लगा कि कारण बीमारी का जल्दबाजी, हार्ट अटैक क्यों आते हैं, जल्दीबाजी, चिंता, गुस्सा, उदासी, अपनी मन की बातें शेयर न करना, तब ये रिसर्च प्रोग्राम बना। तो बाबा ने मुझे एक दिन टच किया था कि बच्चे हार्ट की बीमारी होती क्यों है, हार्ट के ब्लॉकेज होते क्यों हैं, हार्ट अटैक क्यों आता है, अमृत वेले के टाइम या उसके थोड़ी देर उस बीच में ही मुझे टच किया था। वो भी दिन में मुझे याद है 27 फरवरी 1995 को टच किया था अमृत वेले, और कैसे फिर एक दिन टच किया 26 फरवरी को टच किया, कैसे होता है 27 फरवरी को बाबा ने टच किया, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। और खाली हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, मोटापा वगैरह के भी कारण मुझे, और भी ब्लड प्रेशर और भी बीमारियों के बारे में, क्योंकि संकल्प चलते रहते ना हमें, तो ये संकल्प चलते डॉक्टर्स को भी, बीमारी हम ठीक करते ठीक होती नहीं है, दवाई दो तो ठीक है, दवाई हटा दो तो फिर दोबारा शुरू हो जाती, होता नहीं होता, डायबिटीज की दवाई दो तो कंट्रोल में आती फिर छोड़ दो फिर वैसे की वैसे, ऐसे हार्ट की दवाई ले रहे हैं तो दर्द कम है फिर दोबारा शुरू हो जाती, ऐसे उदासी की दवाई, नींद की दवाई देते तो आदमी ठीक लगता है, फिर नहीं लो तो फिर वैसे की वैसे। तो जड़ क्या है, तो बाबा से पूछता रहता था। ये सूक्ष्म वतन में जाने के बाद मेरी बातचीत होनी शुरू हुई थी बाबा से, तो फिर मैं बाबा से पूछता था, तो बाबा कहते अच्छा बच्चे ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता, तो फिर मेरे को हो गया था। तो तब ये प्रोग्राम बन गया था, और उस रिसर्च प्रोग्राम बन गया तब मैं उसको करने के लिए माउंट आबू आ गया था। उसके बाद क्या हुआ, मैं तो क्रिकेट खेलता था, लॉन टेनिस खेलता था, बैडमिंटन खेलने का पड़ा, हमने सारे माउंट आबू के सब पहाड़ चढ़े, बाबा के पहाड़ी रोज चढ़ते थे। नवंबर 1996 में मुझे हार्ट की समस्या हो गई 37 साल की उम्र में, 37 की एज में, और मुझे छाती में दर्द हुआ, घबराहट हुई नवंबर में, और बहुत पसीना आया, घबराहट हुई, जबकि अचानक हुआ मुझे, और मुझे जब तकलीफ हुई तो मेरे को उस दिन से छाती बहुत भारी रहने लगी और बाजू सुन हो गई, ECG खराब हो गया, और मैं सो नहीं पाता था, बैठे ही रहना पड़ता था, धड़कन इरेगुलर होती थी बहुत, लगता था अभी गया, हार्ट बंद हो जाता था बीच में, फिर चल पड़ता था, फिर बंद होता, फिर चल पड़ता, ऐसे भूकंप आता ना, ऐसे कभी देखा ना भूकंप कैसे आता है, कैसी फीलिंग आती है ना जोर से, ऐसी फीलिंग आती। तो एंजियोग्राफी कराई बॉम्बे जाके, नॉर्मल थी। इको कराया अहमदाबाद में, उनको पता नहीं लगा। तो 3 महीने हो गए थे मुझे सोए हुए, सारी रात ऑक्सीजन लेता था, बैठा सो नहीं सकता था, लेट नहीं सकता था। फिर क्या, फरवरी 97 में मुझे एक कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस थी उदयपुर में, तो मैं चला गया। मैंने कहा यहाँ भी नींद नहीं आती, तो मेरे एक फ्रेंड था यूएस का, उसने देखा, उसने डॉक्टर गुप्ता आप यू आर नॉट लुकिंग वेल, आपकी आंखें बहुत ऐसा लग रहा बहुत से दिनों से आप सोए नहीं। मैंने कहा हाँ ऐसा तो है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, ऐसा ऐसा हो रहा है। उसने कहा लेट मुझे, मैं आपका हार्ट देखता हूँ। तो उसने मेरा इको किया कॉन्फ्रेंस में, उसने कहा आपके हार्ट की दीवारें बहुत मोटी हो गई और आपका जो रास्ता है ना खून जाने का दिमाग की तरफ, वो बंद हो गया, उसमें इतना प्रेशर बढ़ गया, 96 प्रेशर हो गया, और उसमें तो दीवारें इतनी मोटी हैं कि अगर आपका, अगर आपने ऑपरेशन नहीं कराया तो आप कभी भी डेथ हो सकती है, और अमेरिका में आ जाओ हम आपका इसका, मैं इसका स्पेशलिस्ट हूँ, और मैं जानता था वो इसका स्पेशलिस्ट था। तो उसने कहा आप आ जाओ मेरे पास, मैं इसका ऑपरेशन कर दूंगा और हम आपसे मिनिमम चार्ज लेंगे और मशीन लगा देंगे यहाँ पर। मैंने कहा ठीक है मैं आपको बताऊंगा, नंबर वंबर दे दिया उन्होंने कि यूएस में मैसेज दे देना, तो आई मेक यू मेक ऑल द अरेंजमेंट्स, मैं सब अरेंजमेंट कर लूंगा। मैं दादी के पास आया अगले दिन, प्रकाशमणि दादी जी के पास आया, तो दादी ने मुझे कहा, दादी गुलजार साथ में बैठी थी, दादी कहती कोई बात नहीं मैं मोहिनी बहन को बोल देती हूँ यूएस में, हाँ वो इनका ऑपरेशन हो जाएगा, चले जाओ ऑपरेशन करा के आ जाओ, मशीन भी लगवा लो। दादी जी मैं तो ऑपरेशन कराने थोड़ी ना आया था, मैं तो लोगों को ऑपरेशन से बचाने के लिए आया था, रिसर्च करने के लिए आया था। तो दादी ने गुलजार दादी को बोला, दादी गुल गुलजार नहीं बोलते, इनको गुल बोलते, गुल बाबा से पूछो क्या करना है डॉक्टर का, ऑपरेशन कराने जाना है कि इसको बिना ऑपरेशन के कुछ हो सकता है क्या। तो दादी को मैसेज दिया, दादी को बाबा ने कहा, मतलब बड़ी दादी ने दादी को बोला। तो अगले दिन गुलजार दादी, जब मैं मुरली के पास गया मिलने, तो दादी ने कहा बाबा ने कहा है बच्चे को राजयोग की रिसर्च करनी है ना, बच्चे को राजयोग का तो अनुभव है ही नहीं, अनुभव की अथॉरिटी तो बनाई नहीं है अभी तक, तो कैसे रिसर्च करेगा, ये बीमारी आई है ऑपरेशन कराने के लिए नहीं, राजयोग के अनुभव की अथॉरिटी बनाने के लिए आई। फिर बाबा ने मैसेज दिया, बच्चे को बोलो 1 महीना छुट्टी देवे हॉस्पिटल से और घर में बैठ के खूब याद करे, खूब जैस खूब याद करे, चार्ट घंटे घंटे याद का चार्ट बनाए और खूब याद करे, निरंतर याद करे, और फिर मुझे 1 महीने के बाद वापस बतावे कि क्या हुआ, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं छुट्टी ले ली, छुट्टी लेके मैंने घंटे घंटे याद का चार्ट, अभी तक भरता हूँ उस चार्ट को, तभी से शुरू किया था। उस दिन वो दिन था, कौन सा दिन था, मार्च 97। कितने साल हो गए उस बात को, 28 साल से ज्यादा समय, 28.5 साल हो गए, तब से मैं चार्ट बनना शुरू किया था। मैंने तब तो कागज पे बनाया था ऐसे हाथ से लिख के डेट डाल के, घंटे घंटे याद का चार्ट बनाया। तो मैंने एक दिन तो पहले चार घंटा, पांच घंटा, छह घंटा, आठ घंटा, एक दिन 9 घंटा किया, एक 10 घंटा, एक दिन 10.5 घंटा किया। तो मैं बाबा के पास जाता था, बाबा से, बाबा बहुत प्यार करते थे, माथे पे हाथ फेरते, साथी पे हाथ फेरते, अच्छा लगता था, और उस समय अच्छा लगता था, फीलिंग अच्छी आती थी। फिर तो उसके बाद भी छाती भारी रहती थी, बाजू में दर्द रहता था, धड़कन वैसे ही होती थी, रात को सो नहीं सकता था। तो दादी को मैंने बताया, महीने के बाद दादी को बताया, दादी ऐसे समय अच्छा लगता है जब करता हूँ, कमेंट्री चला के योग करता हूँ या जैसे भी जो भी करता हूँ मैं, जैसे करते थे सभी भाई बहने हम करते थे वैसे करता हूँ। तो दादी ने कहा अच्छा बाबा से पूछ के, इसको तो कुछ फायदा नहीं हुआ, देखो चार्ट भी लेके गया था, चार्ट दिया दादी को, मैंने दिया तो देखा, हाँ दादी कहते हैं हाँ बहुत अच्छा चार्ट मेंटेन किया। तो 10.5 घंटे का चार्ट भी दिखाया, दादी कहते बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो ठीक क्यों नहीं हुआ। दादी गुलजार दादी को बोला जाओ बाबा को बोलो, क्या बाबा को बोलना है इतने घंटे का चार्ट देखो बच्चे का चार्ट है, क्यों नहीं ठीक हुआ बच्चा। तो दादी फिर मुझे अगले दिन बाबा संदेश लेके फिर मैं अपने कमरे में ले गई, दादी गुलजार मुझे अपने कमरे में ले गए, कमरे में ले गए तो कमरा यहाँ ना, यहाँ ना जो कमरा पीछे जहाँ रतन दादी के साथ में कमरा ना, जो उस कमरे में था ना, दादी ने मुझे बिठा दिया, दादी सोफे बैठी मुझे बिठाया सामने। दादी कहती बाबा ने कहा बच्चा तो, बच्चा कहता है मैं 10.5 घंटा याद किया, 10 घंटा 9 घंटा, तो बच्चा तो मेरे पास एक बार भी नहीं आया, सुना, 8 घंटा 9 घंटा यार के बच्चा था मेरे पास, एक बार भी नहीं आया। दादी मैं तो रोज जाता, मैं तो कुछ करता ही नहीं था, बस खाना खाना सोना और बस सोना, बैठे बैठे सोता था, दिन रात यही काम करता था, बस बाबा को याद करना, मुड्डी पढ़ना, बाबा को याद करना। तो मैं तो बाबा के पास, बाबा ने कितनी बार मेरे पास ऐसे ऐसे किया, प्यार किया, ऐसे कहा बच्चे ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ऐसे इसको याद नहीं कहते। याद का मतलब क्या है, बच्चे को बोलना बच्चा, मतलब पहली तो बात अंतर्मुखी बनना, पहली बात अंतर्मुखी बन जाओ। दुनिया की सब बातें, अखबार, टेलीविजन, समाचार, सबसे अंदर अंदर में जो मैं आत्मा हूं ना, परमात्मा पिता से कंबाइंड होकर सोचना, निर्णय करना, देखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, खाना पीना, श्वास लेना, हाथों से कर्म करना, चलना फिरना, किसी से व्यवहार करना, पेशेंट देखना, कुछ भी हो बाबा से कंबाइंड होकर करो। अंतर्मुखी का मतलब यह है, देह और देह की दुनिया से अटैच होकर हर काम करो, अंतर्मुखी पहले हो जाओ। जरा भी भय मुक्त है, अगर योग का प्रयोग करना है, अपने तन को स्वस्थ बनाना है, तो सुबह शाम के योग से कोई आदमी स्वस्थ नहीं बन सकता है। श्वासों श्वास याद चाहिए। बताऊं, मैं पहले शेयर कर रहा हूं, ये जो है मैं क्योंकि बता रहा हूं कि इससे मेरा जीवन परिवर्तन हुआ और इसी से बाकी जितने लोग ठीक हुए ना, इसी सिद्धि से ठीक हुए, जो असंभव भी संभव हो गया, असंभव भी संभव हुआ। तो पहले तो बात बाबा ने कहा, पहले अंतर्मुखता। दूसरा बाबा ने कहा बच्चे 4 साल से बच्चे को जो भी याद है ना, जो भी कुछ उसके साथ हुआ, जो भी बचपन से जो भी हुआ है, अपनी पूरी कर्म कहानी बचपन से, इसने किया या किसी और ने उसका गलत किया, वो सारी बाबा को देवे लिख के, और फिर बार बार देवे। जब तक वो बात स्मृति में आना बंद ना हो जाए, उसकी स्मृति का, तब तक वो रोज लिखे, रोज लिखे। दिन में 10 बार भी याद है तो 10 बार भी लिखे। अंदर से जहर निकल जाना चाहिए। अभी मुरली चली थी, मन की स्लेट बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, याद है आपको, तभी उन्हीं दोनों मुरली चली थी। मन की स्लेट क्लीन होगी तब जाके बाबा, तब बाबा उस पर कुछ नया लिख सकता है। बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, अगर तब तब योग का प्रयोग कर सकते हो। राजयोग वो वंडरफुल योग है जिससे हम सदा के लिए स्वस्थ निरोगी बन सकते हैं। तीसरी बात बाबा ने बताई, तो पेन लिखने, तीसरी बात बाबा ने कहा बच्चा जरा भी राजयोग में कुछ भी मिक्स ना करे। श्रीमत में जरा भी मनमत परमत मिक्स होगी ना, तो राजयोग इफेक्ट नहीं करेगा, जरा भी असर नहीं होगा। परमानेंट बीमारी निकल जाए मन की और तन की, उसके लिए बहुत बहुत आवश्यक है कि विधि में जरा भी कुछ ऊपर नीचे होगा ना, तो राजयोग का असर नहीं होगा, राइट। तो दादी गुलजार ने मुझे उस समय एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप दूध पीते हो एक गिलास, वो ताकत देता है, दूध में कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, चीजें होती हैं, तो उसमें जरा आधा चम्मच भी जहर मिला दो तो क्या हो जाएगा, क्या होगा? अभी ताकत दे कमजोरी करेगा। दूध वो 300 ml दूध पिया, उसमें कमजोरी आएगी, ताकत आएगी, कमजोरी आएगी, मर भी सकते हैं। रोज पीते रहो तो कुछ भी हो सकता है ना। तो दादी ने कहा नहीं, बाबा ने कहा बच्चा श्रीमत में जरा भी मनमत परमत, शास्त्र मत, गुरु मत, कुछ भी मिक्स नहीं करना। ये रामबाण औषधि है, अमृत धारा है, संजीवनी बूटी है, उसमें कुछ भी मिक्स, मुरली के अलावा कुछ और ना हो। तीसरी बात बाबा ने, दादी ने कहा कि जब तुम, दादी ने कहा बच्चे, बाबा ने कहा है, बच्चे से पूछा बच्चे पासपोर्ट है सूक्ष्मता में जाने का, तुम सूक्ष्मता में जाते थे, पासपोर्ट लिया था आपने, वीजा निकलवाया था, टिकट लिया था क्या? मैंने कहा दादी पासपोर्ट वीजा क्या होता है, हमें तो पता नहीं, हम तो जाते हैं जैसे बताते हैं क्लास में, हम बिंतु आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में गए, चांद तारों के बीच में से होते सूक्ष्म वतन में पहुंच गए, बाबा बैठा है बाबा गोद में चले गए, बाबा ने हमको प्यार किया, यही तो हमें आता है करना जैसे बताते हैं, हमने भी किया। दादी ने कहा नहीं ऐसा नहीं। बाबा ने कहा बच्चे सच्ची दिल, सच्ची दिल, और जिसमें साफ दिल मना, सच्ची दिल में बाबा के सिवा कुछ और ना हो, साफ दिल मना जिस दिल में बाबा के श्रीमत अर्थात मुरली के सिवा कुछ और ना हो। वो बच्चा ही वो पासपोर्ट है, सुना, वो पासपोर्ट है सूक्ष्म वतन में जाने का, परम धाम में जाने का। सूक्ष्म वतन में पापक्रम भस्म नहीं होते हैं, परम धाम में जब तक अशरीरी आत्मा बन के परम धाम में शरीर बाप से कंबाइंड ना हो, निराकारी आत्मा बन के निराकारी बाप से कंबाइंड ना हो, तब तक हमारे पापक्रम भस्म नहीं हो सकते। किंतु सूक्ष्म वतन वो स्थान है जहां से हम बाबा के साथ सर्व संबंधों के का अनुभव अथॉरिटी बन सकते, वहां से बाप एम्पावर करके फिर बाप हम परम धाम में जा सकते हैं। परम धाम में हमारे वो करंट, वो शक्तियां मिलती हैं हम आत्मा को, वो चार्ज हो जाती है बैटरी, जिससे आत्मा फिर, बाबा ने ये भी बताया कि बच्चे विक्रम विनाश को योग से नहीं होते, योग लगाने से विक्रम विनाश नहीं होते हैं। बताओ मैं योग लगाया, मान लीजिए कि मेरा बहन से या भाई से नहीं बनती है सेंटर पे, मैं सेंटर पे रहता हूं या मैं मधुबन में रहता हूँ, पांडव शांति में रहता हूँ, किसी भाई से दो चार भाई ऐसे हैं जो उनकी मेरे से नहीं बनती है, वो सबसे तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, मेरे से खराब व्यवहार करते हैं, तो मैं योग लगा के आया तो क्या करेंगे, वो मेरे से प्यार से बोलना शुरू कर देंगे। बताइए आप क्या समझते हैं, हम अशरीरी स्थिति का बीज रूप स्थिति का योग लगा के आए तो बहनें आपस में प्यार से बात करना शुरू करते सेंटर में, होता है क्या, क्या होता है नहीं, बाबा के साथ का अनुभव करके हमारे अंदर क्या होता है, सहन, इतनी सहन करने की शक्ति आ जाती है, समाने की शक्ति आ जाती है, सामना करने की शक्ति आती है, और जो उनको तंग करते हैं उनको सहयोग करने की शक्ति आ जाती है, उससे विक्रम विनाश होते हैं, राइट। विक्रम विनाश ऐसे नहीं होते, क्योंकि मुझे कोई भी बीमारी आई तन की या मन की, मुझे एंजाइटी रहती है, मान लीजिए चिंता रहती है, एंजाइटी रहती है क्या होगा, क्या डर लगता रहता है, मुझे बात बात में मूड ऑफ हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, मुझे नींद नहीं आती है, कई बार होता है ना नींद नहीं, कंट्रोल ही नहीं होता मन, तो नींद नहीं आएगी, विचार के पीछे विचार, सेवा के विचार चल पड़े बांधो चलो तो नींद नहीं आएगी, कल प्रोग्राम है नींद नहीं आ रही है, क्यों आनी चाहिए ना, आनी चाहिए, स्वराज्य अधिकारी आत्मा तो नींद आनी चाहिए, मन को कंट्रोल संकल्प एकदम स्टॉप तो स्टॉप हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मन चाहिए नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं आते। तो ये कहा कि तो अपने जो संकल्प जो है, मतलब इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, सच्ची दिल साफ दिल। बाबा ने कहा बच्चे दिल में देखो, जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया तो नया जन्म है, नया जन्म है कि नहीं, तो नया जन्म में पुरानी बातें क्यों याद आए। तो दिल में जब बाबा आ गया, नया जन्म दिल में, मेरे दिल मना क्या, ये दिल नहीं, ये तो बॉडी का दिल है, आत्मा का दिल यहां है, आत्मा कहां पर है, यहां से 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे, और जैसे देखा ना आपने वो शूटिंग बोर्ड होता ना, जहां पे एक बिंदु होता है, फिर सर्कल होता है, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, फिर चौथा सर्कल, तो जो पहला सर्कल वो दिल है, आत्मा के आसपास जो जो एरिया है ना, सबसे ज्यादा एनर्जी वहां है, सातों एनर्जी आत्मा की वहां है सबसे ज्यादा, और आत्मा चाहे ना वो उस एनर्जी को रिसीव करती है, जैसे आत्मा सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हैं, जैसे एक बल्ब से हमेशा लाइट निकल रही, गर्मी निकल रही है, वो सेल्स, वो जो सेल्स है ना वहां पे, कोशिकाएं हैं ना, जो ब्रेन का कंट्रोल रूम है हाइपोथैलेमस, वहीं आत्मा की सीट है, तो वो सेल्स को सेंस करती है, ज्ञान की एनर्जी, पवित्रता की एनर्जी, शांति की एनर्जी, सत्यम निस्वार्थ स्नेह की एनर्जी, अतीन्द्रिय सुख आनंद की एनर्जी, और शक्तियां, आठ शक्तियां, तो इमीडिएटली वो एनर्जी क्या होती है, वो कन्वर्ट कैसे में हो जाती है, विचारों में कन्वर्ट हो जाती है, ज्ञान के संकल्प, ज्ञान की भावना, ज्ञान मानस क्या है, सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, समझ किसकी समझ, सत्य की समझ, तो वो ज्ञान के संकल्प चलने शुरू होंगे, अर्थात मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है, और ड्रामा में जो भी कुछ हुआ है मेरे अपने कर्मों का फल है। जो कुछ मैंने अभी तक बोया है, जो मेरे साथ अभी तक हुआ है, जो हो रहा है, मेरे अपने किए कर्मों का फल है। अब अगर मैं बाबा की याद में रह के कर्म करूं और परमात्मा के श्रीमत पे कर्म करूं हर कर्म, तो उसका प्रत्यक्ष फल क्या होगा? अब मेरे अंदर ज्ञान के साथ पवित्रता, शांति, सत्य प्रेम, अतिंद्रिय सुख, आनंद और आठ शक्तियां भी आ जाएंगी, अर्थात मैं आत्मा स्वराज अधिकारी बन जाऊंगे। भविष्य फल क्या होगा? भविष्य में 21 जन्म की बादशाही मिलेगी। अभी तक के कर्मों का फल ये है जो मेरे साथ अभी तन में हो रहा है, कुछ कुछ मन में हो रहा है, कुछ संबंध संपर्क में हो रहा है, ऊपर नीचे होता रहता, नहीं होता रहता, ये मेरे अपने के कर्मों का फल है। और एक बात और बाबा ने बताई, कई बार हम कहते हैं ना कि बाबा मिल गया, अभी बाबा तो मेरे कहते ना ब्याज होता है ना, हर चीज का ब्याज होता है, ब्याज होता नहीं होता, 100 साल का ब्याज कितना होता है, हमारा कितना साल का ब्याज है, 2500 साल का ब्याज है, कितने साल का ब्याज है, 2500 साल का ब्याज है ना हमारा, नहीं है, 2500 साल का हमारा ब्याज है कर्मों का हिसाब। किसी माने किसी व्यक्ति से मैंने कुछ लिया 100 साल पहले, 100 साल के बाद कितना हो गया, वो 10 रुपए उधार लिया, 100 साल का कितना हो गया, हिसाब लगाया था मैंने एक बार, 4,18,35,040 रुपए बनता है। किसको मैंने एक बार किसकी इंसल्ट अपमान कर दिया पिछले जन्म में, चक्रवर्ती ब्याज नहीं, सीधा ब्याज है, बहुत सिंपल ब्याज है, डबल डबल करते जाओ बस ना, इतना आ जाएगा। 1947 तक हर 3 साल में पैसा डबल होता था, 47 से 67 तक 4 साल में डबल होता था, 67 से 87 तक 5 साल में डबल होता है, और 87 के बाद तो अभी जब से मुद्रा कम हो गया ना, तब तो 6 साल, 7 साल, 10 साल में डबल होता है, 10-11 साल में डबल होता है। आप लगा के देखना इतना हिसाब किताब पहुंचे, बड़ी ज्यादा ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा। तो कर्मों का हिसाब किताब बहुत जबरदस्त है। आपने किसका एक बार अपमान किया ना, 100 साल के बाद वो व्यक्ति क्या बन के आएगा, आपका कौन बन के आएगा, या तो घर में कोई होगा तो घर में कोई ऐसे बन के आएगा, माँ या बाप या कोई ना कोई भाई बहन ऐसा बन के आएगा, बॉस बन के आएगा, आपका इंचार्ज बन के आएगा, और आपका सुबह शाम दोपहर 3 बार तो 3-4 बार तो अपमान होगा ही होगा, बिना कुछ करे भी होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और आप वहां से भाग भी नहीं सकते, संबंध ऐसा है, सुना आपने, वहां रहना भी वहीं पड़ेगा। एक बार गाली दी थी 100 साल पहले, कितनी गाली खाओगे इस जन्म में, कम से कम 1000 बार तो खाओगे, नहीं खाओगे, ज्यादा ही हो जाएगा, कुछ बोल दिया तो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। यही तो मन को दुखी करने वाली बातें हैं, और ये कोई माफ नहीं होता। मैं पहले कहता था बाबा, जब बाबा मिल गया ना, बाबा की सही विधि पे चलेंगे ना, तो बाबा क्या करेगा, 2-3 बार 10 बार गाली खा ली, बाकी 990 गाली माफ हो जाएंगे। बाबा ने कहा बच्चे मैं सोचता था ऐसे पहले, इसके पहले मैं ना 97 से पहले, मुझे हार्ट की बीमारी होने से पहले सोचता था, तो मैंने कहा बाबा तो बाबा का बन गए तो अभी बाबा माफ करा देगा। बाबा ने कहा ना बच्चे नहीं, माफ नहीं कराता हूं, वो तो उसका ब्याज बना है, उसकी उसकी कमाई है ना तुम्हारा, तुमने अगर बैंक में मान ले 1000 रुपए जमा कराए, 10000 रुपए जमा कराए, तुम्हारा बन के अभी 10 लाख हो गया 20 साल पे 40 साल पे, तो उसका मैं माफ कैसे कर दूं, 10 लाख मैं कहूं 10000 रुपए लो तुम, बाकी 9,90,000 तुमको नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं करता बाबा। बाबा ऐसा नहीं करता है, पूरा का एक पैसा भी माफ नहीं होता है, एक भी गाली माफ नहीं होती, एक भी इंसल्ट माफ नहीं होती, जो किया वापस मिलेगा, और आखिर तक मिलेगा। कब तक मिलेगा? जब तक शरीर में है तब तक मिलेगा, कब मिलेगा ये पता नहीं है, कि तू बाबा से कंबाइंड होगा, इतना आभा मंडल इतना बड़ा कर लो, इतना आभा मंडल बड़ा कर लो, इतनी सहनशीलता के अवतार बन जाओ, इतनी समाने की शक्ति के अवतार बन जाओ, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति के अवतार बन जाओ, कि आपको फील ही ना हो। सागर में एक छोटा पत्थर डालो कहां गया पता नहीं, एक पहाड़ डालो कहां गया पता नहीं, पत्थर और पहाड़ समान है, राइट? वो करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, कि तो एक दिन जब आप रिएक्शन नहीं करेंगे तो आदमी अपने आप करना बंद कर देगा, वो करेगा, वो सामने से करेगा, सबके लिए अच्छा करेगा, आपके लिए खराब करेगा, करेगा करेगी, वो आपके लिए खराब करेगा, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब है। रहता भी यज्ञ में ही है, रहती भी यज्ञ में ही है, तो भी करेगी, करेगा। आप सभी घर के बैठे टीचर मैंने बैठे ना सभी, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। वैसे सबके सामने बातें नहीं कर सकते हम इस तरह से, कि तो कर्मों का बहुत गुहे गति है, बहुत गुहे गति है। माफ बाबा एक पैसा भी नहीं करता, एक भी चीज माफ नहीं करता। मुझे सहन करके समाना ही पड़ेगा, और सामने से प्रॉब्लम आते रहेंगे, सामना ही करना पड़ेगा, और फिर भी सहयोग करना पड़ेगा उसको ही। ये भी फिलॉसफी है, कर्म फिलॉसफी, क्योंकि हमने ऐसा किया है उसके साथ, जो हमें सहयोग करता था, हमें सब कुछ, हमने उसके खिलाफ किया थोड़ा सा है, किंतु ब्याज बहुत हो गया है, तो हमको करना ही पड़ेगा। तो बाबा ने यही कहा कि बच्चे को बोले ऐसा करके, और फिर क्या करे, बस बाबा की मुरली, सच्ची सच्ची में दिल में एक बाबा ऑलमाइटी, बस दिव्य ब्राह्मण जन्म हर समय ये उसको इस स्मृति पे रखो, इमर्ज रखो कि यहां कौन बैठा है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, सत्य और निस्वार्थ प्रेम का सागर, अतीन्द्रिय सुख आनंद शक्तियों का सागर बैठा है बाबा, हीलिंग एनर्जी का सागर, ज्वालामुखी योग अग्नि का सागर यहां बैठा हुआ है, हमेशा चलते फिरते। आज अभी जो चल रहा है ना हमारा व्यक्ति इशारा, लवलीन स्थिति, समाये रहो, निरंतर समाये रहो, इसी में समाये रहो, है ना भाई? क्या एक कितने दिन हो गए व्यक्ति इशारा चल रहा है ना, आज भी ऐसा ही था ना, सारा दिन समाये रहो, चलते फिरते उठते। और बाबा दादी मुझे कहती, दादी मुझे कह, दादी बड़ी दादी ना, दादी प्रकाशमणि मुझे बोलती थी, दादी कहती थी मेरे दिल में बाबा रहता है, ऐसे हाथ करके मेरे दिल में बाबा रहता है। दादी से मैं आने के बाद कितने साल, मतलब 13 साल तो बहुत क्लोज रहा दादी से, रोज मिलना रहा। दादी ने मुझे 5वें दिन ही कहा था मुरली के बाद रोज 5 मिनट तो मेरे पर बैठ के जाने, 5 मिनट के बाद आधा घंटा भी हो जाता था, कभी 20 मिनट भी हो जाता था। और दादी कुछ ना कुछ सिखाती थी, मेरे दिल में बाबा बैठा है, मैं बाबा के दिल में बैठी हूँ, ऐसे बोलती थी। मैं बाबा का चित्र देख के बोलती थी, मैं जैसे आपसे बात करती हूँ ऐसे बाबा से बात करती हूँ। दादी ओम शांति मन में टोली बांटती थी ना, तो टोली बांटती थी, तो ऐसे 2000 लोग बैठे हैं, सबको टोली ऐसे देगी। दादी को हम कहें दादी हम ऐसे करते हैं ना, एक बहन को बिठाते हैं वो आपके पास साथ में, आपको अपनी दादी दृष्टि भी देगी। एक बार मैं 2000 बार ऐसे करके देखा, मेरा तो हाथ ही जाम हो गया। 2000 बार ऐसे करके देखा ना, ऐसे ऐसे करके यूं करके साथ में दृष्टि भी दो और टोली भी दो। तो मैंने दादी आपको हाथ दर्द नहीं होता ऐसे, कहते जब मैं थक जाती हूँ मेरा बाबा मेरी मालिश कर देता है। तो ये स्थिति, ऐसी स्थिति हो, इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी दादी बाबा के साथ हो कि बाबा दिल में है और बाबा की मुरली, बाबा की मुरली का एक एक महावाक्य सच्ची दिल की लगन से। मैं पहले भी ABCD कहता था, अभी भी कहता हूँ, ज्ञान का सार क्या है, ABCD, आत्मा बाबा कनेक्शन माना संबंध, और D4 drama, है ना। ये इसी को बाबा ने का बच्चा कहता है ना, ABCD कहता है ना, ए दिल सच्ची दिल की लगन से ए और बी की गहराई में जाओ। ए और बी माना अपने को आत्मा, मैं आत्मा कैसे शरीर को चला रही हूं उसकी गहराई में जाऊं, मैं आत्मा कैसे मन के माध्यम से शरीर को कैसे चला रही हूं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं मेरा हार्ट चल रहा ढंग से, क्यों बीच बीच में रुक जाता है, अपने आप से बात करें कहां पे प्रॉब्लम है, क्यों बीच में हार्ट में दर्द होता है, बाजू क्यों वैसे बंद हो जाते, सो नहीं क्यों नहीं पाता है, अपने आप से बात करें। परमात्मा कैसे ऊपर बैठ के चला रहा है सारी धरती को, उसी गहराई में जाओ। कैसे परमात्मा के पास करंट कौन खींच सकता है परमात्मा से, सीमा ना संबंध, संबंध की रहस्य में जाओ, संबंध के रहस्य में जाओ, करंट कैसे खींचेंगे बाबा से, करंट कौन खींच सकता है। अभी था ना मुरली, एक क्या थी मुरली, धैर्यवत समझ और गंभीरता, थी ना, तीन बातें थी ना, याद है ना, अभी कुछ दिन पहले मुझे अगस्त में चलिए, तीन बातें थी ना। तो बाबा ने कहा कि, बाबा ने कहा बच्चे को बोलना, जब तक रहस्य क्या है ऊपर से करंट खींचने का, सर्व संबंध बाबा के साथ हो। अगर एक संबंध भी कहीं और है ना, किसी भी भाई बहन की तरफ, किसी भी संबंध की तरफ, किसके दोस्त अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति से कुछ ऐसा लगाव है, झुकाव, प्रभाव, टकराव है, तो हम करंट खींच नहीं सकते, बुद्धि की लाइन क्लीन नहीं है, क्लियर नहीं है बुद्धि की लाइन। वो व्यक्ति, वो कोई वस्तु भी अगर दिल में है ना, कोई वस्तु की तरफ भी है ना लगाव, तो बाबा से करंट नहीं आ सकती। बुद्धि रूपी तार पूरी उसमें प्लग पूरा लग जाना चाहिए। थोड़ा प्लग बाहर छोड़ते हो करंट आती है क्या, मोबाइल चार्ज होता है क्या, पूरा डालना पड़ता नहीं डालना पड़ता। तो सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद होनी चाहिए, बस बाबा ही मेरा संसार है। क्यों नहीं हम ठीक होते, लोगों की डायबिटीज ठीक हो जाती है, लोगों का ब्लड प्रेशर ठीक हो, दवाएं छूट जाती हैं, लोग 30-30 किलो वजन कम कर लेते हैं, 40-40 किलो वजन कम, 50-50 किलो वजन कम कर लेते हैं, राजयोग से, सिंपल भोजन से, कुछ स्पेशल नहीं दे रहे, नेचुरोपैथी भी नहीं करते हैं। हम 3 बार खाना खिलाते हैं, 2 बार फल खिलाते हैं, 5 बार पेट भर के, रोकते भी नहीं कितना खाना है, जितना पेट भर के खाओ। बहन जी को तो पता है, हमने आपको रोका था बहन जी कुछ खाने से, कम करने को बोला था, कम खाओ, अच्छे से खाओ ना, किसी को रोका तो रोकते नहीं है, अच्छे से खाओ, उनको पता है ना। और खूब खिलाते हैं, हमारी तो माताओं को मैं बोलता हूँ खूब खिलाओ, आधा चपाती ज्यादा ही खिलाओ, कम मत खिलाओ, तो भी वेट कम हो जाता है। कितना किलो कम, 5 दिन में 5 किलो कम, कैसे कम? ये सारे हमारे हार्मोन्स है ना अंदर के, उनकी इरेगुलरिटी से प्रॉब्लम होती है। और परमानेंट कम होता है, परमानेंट ना, परमानेंट वापस नहीं आएगा। तो ये जो है हमें समझने की आवश्यकता है। तो बाबा ने कहा बच्चे सच्ची दिल की लगन से ए और बी की गहराई में जाओ, रियलाइज करो अंदर, सच्चे दिल से महसूस करो। बाबा ने कहा बिना सच्चे दिल की महसूसता के अनुभूति नहीं होती है, और बिना अनुभूति के प्राप्ति नहीं होती है, और बिना प्राप्ति के, बाबा के बोल है ये गुजरात आदि के द्वारा, बिना प्राप्ति के तृप्ति नहीं होती है, और बिना तृप्ति के पुराना स्वभाव संस्कार परिवर्तन नहीं होता है। सच्ची दिल के जब महसूस रियलाइज करते हो ना कि हाँ मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, पर मेरे अंदर में आत्मा परमात्मा से सर्व संबंध के महीन सार वाली याद, बाबा ही मेरा संसार, चेक कर लो, किसी और की तरफ बुद्धि तो नहीं जा रही, किसी और की याद तो नहीं आती, हैप्पी बर्थडे बोल दो उसको, जरा मैं उसका आज बर्थडे है, आज उसको मैं विश कर लूं, आज उसको अमृत वेला ध्यान आ रहा है उसका विश कर लूं मैं, आज उसको ये कर लूं, उसको मैं कुछ कर दूं, संदेश भेज दूं, नहीं, किस बात के लिए? क्या हैप्पी बर्थडे से उसका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा? उसको गुलाब का फूल भेजने से खुश हो जाएगा वो? उसको फायदा होने वाला है क्या? नहीं, लगन लगाओ, ऐसी लगन हो। तब तो मोबाइल नहीं था हमारे पास, मोबाइल तब होता ही नहीं था, 95, 96, 97 मोबाइल कहाँ था, हमारे पास था ही नहीं। तो बाबा ने कहा बच्चे सच्ची दिल के लगन से पहले तो रिवाइज करो बार बार कि मेरे दिल में कौन बैठा है, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, और कैसे आत्मा, कैसे मेरे अंदर क्या, मन में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों एनर्जी बॉडी में नहीं जा रही है, कौन से ऐसे संकल्प हैं, कौन सी ऐसी भावनाएं हैं, कौन सी ऐसी वृत्ति एटीट्यूड है, कौन सी किसके प्रति ऐसी दृष्टि है कि वो करंट जो ऊपर से आ रही नीचे नहीं जा रही है। एक तो पहले ही आत्मा में करंट कम है, ऊपर से मन ऐसा नेगेटिव छननी है, मन छननी होते छननी पहले ही ब्लॉक हो तो क्या क्या जाएगा मुझे बताओ। पहले चाय थोड़ी सी है ना, वो भी छानो तो उसमें से सारी चाय छननी ब्लॉक है तो जाएगी नीचे, जाएगी नीचे, जाएगी ग्लास में, जाएगी नहीं। तो फिर मेरे को पता लगा मेरे मन में यही प्रॉब्लम, लिखता था फिर मैं लिखता था, मैंने कागज पेंसिल लेके रखा था, पैड लिखता रहता। तो बाबा ने कहा बच्चे विजुलाइज नहीं करो, क्या करो, रिवाइज, बाबा कहता है रिवाइज करो रियलाइज करो, बार 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 रिवाइज करो रियलाइज करो। एक छोटी छोटी बात, ए और बी की गहराई में जाओ, सी के रहस्य में जाओ, कहां मेरी कमी है महसूस करो, क्यों मेरी करंट नहीं आ रही है बाबा के साथ, कहां पे लीकेज है, कोई संबंध में लीकेज है, किसे टकराव है, किसी से लगाव है, झुकाव है, प्रभाव टकराव है, किस बात में क्या क्यों कैसे, देखो कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। और डी मना ड्रामा, संसार रूप नाटक के राज में जाओ कि मुझे ये समस्या क्यों आती है, मेरे साथ ये व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो इसको महसूस करो और इसमें लगन में मगन हो जाओ। जब मगन हो जाओगे ना फिर क्या होगा, फिर मंथन शुरू होगा, दिल दिल माना चेतना, चेतना से फिर क्या होगा, बाबा ने कहा जब तुम ऐसे करोगे, जब बाबा को अंदर से महसूस करोगे, ज्ञान पवित्रता शांति सत्य प्रेम का सागर मेरे दिल में है, तो ए और बी सी डी को रियलाइज करोगे तब तुम्हारे ज्ञान की तीसरी आंख खुल जाएगी। बाबा ने कहा जैसे ही दिव्य ब्राह्मण जन्म देता हूं बच्चों को, तो मैं ब्राह्मण जन्म देते ही इसको दिव्य दृष्टि गिफ्ट में देता हूं, पर दिव्य दृष्टि किसको देता हूं? जिसके दिल में बाबा है, जिसके दिल सच्ची और साफ है, जिसके दिल में बाबा है और बाबा की मुरली को पॉइंट्स का साधन रिवाइज रियलाइज करता रहता है बच्चा या बच्ची, रिवाइज रियलाइज करती है बार 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 बार, एक ही लगन लगी हुई है बाबा के साथ, वो रिवाइज रियलाइज रिवाइज रियलाइज, बस सारा दिन बच्चे बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ये कहा, जैसे आज की मुरली थी, बाबा ने आज ये कहा मुझे ये करना, कैसे ब्रह्मा कैसे क्या है ना, आज जो बाबा ने कहा, आज का वरदान, आज का स्लोगन, बार 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 बार, मुझे याद है मुझे 6 घंटे लगे थे पहले, उसके बाद मुरली पढ़ने में, एक मुरली पढ़ने में, उस दिन से मुझे समझ में आई, मतलब ज्ञान के तीसरे नेत्र से मुरली को पढ़ो, तीसरे नेत्र से मुरली को पढ़ो, एक एक लाइन को, एक बाबा के महावाक्य है, एक एक लाइन की गहराई में जाओ, उसके रहस्य में जाओ, राज में जाओ, क्यों बाबा ने ऐसा कहा, और हर मुरली का महावाक्य का अर्थ मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, सबके लिए अलग अलग है, हर बच्चे को अलग अलग महसूसता आती है उसी महावाक्य से, उसी वरदान से अलग को अलग अलग महसूसता आएगी। तो जितना रिवाइज रिवाइज करते जाओगे तो क्या होगा, तो उतना गहराई से जब करोगे तो बाबा ने कहा तीसरे नेत्र से देखो करोगे तो क्या होगा, आपको अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी सत्य स्वरूप इमर्ज होगा कि परम धाम में कैसा था बाबा के पास और सत्युग में कैसा था, अपना सत्य स्वरूप इमर्ज होगा, इसमें स्थित होकर जब हर संकल्प बोल कर्म करोगे संबंध संपर्क में आओगे, पवित्रता की डिग्री बढ़ाओ, पवित्रता पासपोर्ट है, सूक्ष्म में जाने का पासपोर्ट क्या है, पवित्रता है, और कितना नजदीक जाओगे बाबा के पास तुम्हारी पवित्रता की गहराई कितनी है इसके ऊपर आधारित। तो पहले लेवल की पवित्रता क्या है, पहले लेवल की पवित्रता है कि हम जब अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के जब संकल्प बोल कर्म करते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, इसको बोलते हैं पहले लेवल की पवित्रता। दूसरे लेवल की पवित्रता जब मैं अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर अर्थात अपने अनादि और आदि देवी देवता स्वरूप में स्थित होकर व्यवहार करता हूं, और सामने वाला का भी जब व्यवहार करता हूं आपसे मिलता हूं, तो आपके भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि पावन सतोपदान स्वरूप को इमर्ज करके व्यवहार करूं, सत्य की समझ से व्यवहार करूं, पवित्रता से व्यवहार करूं, शांति से व्यवहार करूं, सच्चे प्रेम का आदान प्रदान करते व्यवहार करूं, अतिंद्रिय सुख आनंद में रहकर व्यवहार करूं, सर्व शक्तियों को यूज करते व्यवहार करूं, ये सेकंड लेवल की पवित्रता है। पर हमारे अंदर जब आज बाबा ने कहा बीच बीच माया आ जाती है, पर हमारे अंदर क्या भरा पड़ा है, माया कहां से आती है बताओ, माया कहां से आती है, बाहर से आती है कि हमारे पास से आती है, हमारे अंदर ही हमारे जो इतनी ब्रेन सेल्स हैं सब में माया भरी पड़ी है, इस जन्म के और पिछले जन्मों के पापकर्म भरे पड़े हैं, यहां भरे पड़े हैं, अंदर से माया आती है, बाहर की माया तब असर करती है, पहले अंदर की माया असर करती है, पुरानी फाइलें खुल जाती है, किसी व्यक्ति को देख के पुरानी फाइल खुल जाती है, तो फाइलें खुलती है ना, तो क्या होता है उसके कारण लगाव पैदा होता है, क्योंकि हमारे रोज संबंध बदल रहे हैं, रिटर्न जर्नी पे है ना, संबंध नए संपर्क में नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए जिज्ञासु, नई नई भाई बहने आते हैं, रोज आते नहीं आते, वो बहनों के भी व्यवहार बदलते हैं, भाइयों के व्यवहार बदल रहे हैं, उनको भी जन्म से बदल रहे हैं ना, उनके जन्म बदल रहे हैं, हमारे भी बदल रहे हैं, तो किस जन्म में हमने सब किसका क्या किया था हमें पता नहीं है, ये तो बाबा सब जानता है, सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ है ना, हम खाली ये जन्म को भी नहीं जानते ढंग से, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे साथ लगाव झुकाव प्रभाव टकराव, ये तीसरे लेवल के इससे भी मुक्त हो जाओ, किसी भी देहधारी से लगाव ना हो, तो अच्छा लगता है ये भी नहीं, झुकाव भी ना हो, प्रभाव भी किसी बड़ों का रिगार्ड रखो कि तू किसके प्रभाव में होता, एक ही बाबा का प्रभाव होना चाहिए, किसी से टकराव भी ना हो, ये भी अपवित्रता है, ये तीसरे लेवल की अपवित्रता है, पवित्रता का हो या अपवित्रता का है तो अपवित्रता है। चौथे लेवल की पवित्रता, कहीं ना कहीं ऐसी बातें होती हैं मेरे साथ ही हो जाती, मालूम मुझे तकलीफ हो गई, पेट में बहुत एसिडिटी बन गई, हार्ट में दर्द हो गया, अचानक पता लगा एंजियोग्राफी किया मेरी आर्टरीज ब्लॉक है, पता लगा मेरी डायबिटीज बहुत ज्यादा हो गई, मेरे हाथ पैर सुन होने लगे, मेरी रीढ़ की हड्डी में कुछ डिस्क प्लेस हो गया, पता नहीं होता था अचानक ही पता लगता ना, तो क्या क्यों कैसे नहीं होना चाहिए, यह भी अपवित्रता है, राइट। वैद संकल्प पैदा होते ना, फिर बाबा ने कहा कि पांचवे लेवल की पवित्रता कौन सी है, कौन सी है, ब्रह्मचर्य तो पालन करना शुरू कर दिया, पर कभी कभी क्रोध आता है, यह भी अपवित्रता है, लोभ होता है, यह भी अपवित्रता है, मोह भी अपवित्रता है, अहंकार भी अपवित्रता है, और छठे लेवल की अपवित्रता पवित्रता कौन सी है, पवित्रता जो मैं थोड़ी देर पहले कहा, आलस्य भी अपवित्रता है, बाबा का बन गया फिर भी आलस्य आ रहा है, अलबेलापन आ रहा है, थोड़ा सा छोड़ बाद में कर लेंगे ना, मुरली में क्या रखा, मुरली तो बाद में, घर में पढ़ ली ना, सुन ली ना, सेंट्रल क्लास में जाना क्या मतलब है, हम तो रोज सुनाते हैं ना मुरली, नहीं क्लास में फिर भी जाके बैठना। दीदी थी ना क्लास में, आके बैठती नहीं बैठती थी, तो क्लास में जाके बैठना, मतलब सुनाए कोई छोटी बहन भी सुना रही पर हमें जाना चाहिए, रिगार्ड है क्लास का। बड़ी दादी मुझे कहती थी क्लास में, मैं कभी कभी शाम सुबह नहीं आता तो दादी शाम को 5 बजे जब हम आते ना, शाम के टाइम आते थे योग के लिए, आज मुरली में नहीं आए, मैं दादी आज तो उसमें पेशेंट आ गया सीरियस, तो मैंने कहा दादी अब तो पेशेंट सीरियस था, कितने देर कितने बजे पेशेंट थोड़ा बेटर हो गया था, मैं दादी 7:20 पर बेटर हुआ, तो क्यों नहीं आ गए, मैंने कहा दादी क्लास में लेट आना तो बहुत खराब बात होती, नहीं नहीं क्लास में आके बैठो, सारी धारणा के लिए मुख्य साथ सुना, तो एक लाइन भी सुनी, तो क्लास का महत्व है, क्लास की शोभा हो, दरबार है, ईश्वर के दरबार है, उसमें आके बैठो, आपका स्थान है, तो क्लास में आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना भी कुछ हो जाए, मैं तो 7:40 पे भी करूं, मैं सपोज निर्भय भाई बीमार हो गए थे, कोई मुझे बुला लेता है, कोई बीमार होता है कहीं पर, तो तब भी मैं मुरली में लेट आऊं तो तब भी आ जाता हूं, 5 मिनट भी चलो मुझे सुनने को मिलता हूं, एक एक माँ बाप के सुनने को मिलेगा ना, क्लास का महत्व है, हमारी दरबार है वो, बाबा की दरबार है, उसका बहुत महत्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं बस हमने तो सुन लिया, हम कमरे में बैठे हैं, आप कमरे में सुन रहे हैं ना, क्लास दरबार में आके बैठो, ईश्वर की दरबार है, कोई बहन सुना, छोटी बहन भी सुना रही, अभी नई नहीं आई तो भी सुना, नहीं वो सुना रही है कोई बात नहीं, हम कमरे में सुन रहे, नहीं आना चाहिए, सब सारी सारे सेंटर की बहनों को आना चाहिए, भाइयों को आना चाहिए, क्लास की शोभा है। बड़ी दादी ने सिखाया है मुझे, मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं था ऐसा, तो सोचता नहीं मैं तो काम की सेवा पर ईश्वरी सेवा करूं। एक बात और बताता हूँ दादी की, आप जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे को दादी कहती थी कि मैं कहता दादी को शाम मेरा था वहां जाऊंगा माउंट आबू जाऊंगा ना, शाम को 2 घंटा योग किया करूंगा, और रोज शाम को कोई ना कोई सीरियस पेशेंट आ जाते थे, किसको हार्ट अटैक हुआ, किसको कुछ हुआ, किसको कुछ हुआ, रोज शाम को, कभी हफ्ते में एक दिन भी शाम का योग नहीं होता था, कभी तो एक ही दिन होता था, तो मेरे 2 हफ्ते हो गए तो मैं दादी को कहा दादी मेरा तो योग ही नहीं हो रहा, शाम को पेशेंट आ जाते हैं, दादी कहती मैं शाम आपने दादी को देखा है योग करते हुए शाम को बैठे, दादी कभी कभी हफ्ते 2 हफ्ते में जब मिलती हो पांड हम लोगों से मिलती हो तो मिलती हो, तो उस समय तो मेरी मीटिंग होती है, नहीं गुप्ता जी गलत बात है, ऐसा सोचना कि मेरी क्लास मिस हो रही है, मेरा योग मिस हो, नहीं श्वासों श्वास बाबा की याद में रहो, पहले योग फिर कर्म, ये ना सोचो कि मैं यो आदमी ठीक है हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अमृत वेला तो मिस ना करो कभी भी, क्योंकि उसमें कुछ काम नहीं होता है, वो बैटरी चार्ज करने का समय है, तो बाकी टाइम श्वासों श्वास याद में रहो, कौन सी घड़ी तुम्हारी अंतिम घड़ी होगी पता नहीं है तुमको, आज भी था ना मुरली में, कौन सी घड़ी अंतिम पता नहीं है ना, अपनी संध्या की मुट्ठी में था ना, संध्या की मुट्ठी में था ना, कौन सा तुम्हारा अंतिम समय कौन सा पता है तुमको, किसको पता है, पता ही नहीं, तो बाबा ने कहा बच्चे रिवाइज करो, रिवाइज तब सच्चे तीसरी आंख से देखोगे ना तो ज्ञान की स्थिति में, ज्ञान स्वरूप स्थिति में बनेगी, फिर पवित्रता आएगी, पवित्रता की डिग्री कौन सी होगी 6 हो गए ना, आलस्य अलबेलापन, किसी का गुण दिखाई देना भी अपवित्र, किसी के भी दोष मत देखो, गुण देखो सिर्फ, बदलने की भावना, दोष दिख रहा है इसका मतलब मेरी अभी बाबा के पास जाने वाली क्वालिटी केयर क्वालिटी वाली नहीं है, मैं बाबा गोद में एक चिपक जाऊं, बाबा मुझे प्यार कर ले, वो तो जबरदस्ती हम तुम अपने आप को आके मेरे पास मेरे पास तो आते नहीं थे, तुम जबरदस्ती ऐसे ही अपने आप को विजुलाइज कर रहे थे, इमेजिन करते थे कि मैं बाबा के पास गया, मेरे पास तो कभी नहीं आए थे, जब पासपोर्ट होगा वीजा भी क्वालिटी का होगा ना तब तो मेरी गोद में आने लायक बनोगे, उतनी पवित्रता होगी तो मेरे पास आओगे ना, ये तो दूरी खड़े रहोगे, जरा भी दोष दर्शन ना हो, जरा बदलाने के आलस्य नहीं, एक्यूरेट होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, एकदम अलर्ट एक्यूरेट एकदम, बस गए यूं उड़ गए, दो गुण दर्शन सबके गुण देखना, बदलाने की भावना नहीं, रहम दिल रहम आना चाहिए, शक नहीं निश्चय, स्वयं में भी निश्चय, बाप में भी निश्चय, ड्रामा में भी निश्चय और परिवार में भी निश्चय, और चिंता नहीं बेफिक्र, बाबा साथ है, बाबा मेरे साथ हर समय साथ है, हर जगह साथ है, हर कार्य में साथ है, हर संबंध से साथ है, ये निश्चय होना चाहिए, और ड्रामा भी ड्रामा पे भी निश्चय होना चाहिए, और अपने लौकिक अलौकिक परिवार पे भी निश्चय होना चाहिए, कभी ये सोचना नहीं पता नहीं मेरे को कुछ हो गया तो, पता नहीं मेरे को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा मेरा, नहीं सोचना कभी भी ऐसे, कभी नहीं सोचना, बाबा साथ है और हमने देखा इतने साल पांडवन में रहकर देखा है, शांतिवन में रहकर देखा है, जो सच्चे हैं बाबा मदद करता है। भले पद में ऊंचे नहीं है, छोटे हैं तो भी उनकी बहुत मदद होती है। कई बार बड़े भी पद में है तो भी उनकी मदद नहीं हो पाती है। बाबा कैसे मदद करता है हम तो रोज देखते हैं, राइट। सच्चे हैं तो बाबा मदद मिलती है। और विश्वास भी, स्वयं पे विश्वास, बाप पे विश्वास, ड्रामा पे विश्वास, और किस पे विश्वास। टाइम तो बहुत ले लिया मैंने, टाइम तो पूरा ही हो गया, रात होते होते तो सुना आपने। तो ये करने की बात है। और फिर सातवें डर की पवित्रता लास्ट ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मना संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क सोपन में भी पवित्रता, पर साथ साथ सत्संग माना बाबा और मुरली के संग के अलावा कोई और संग ना हो। कोई और संग मैं पढ़ता हूं, किसी और किताब पढ़ता हूं, कभी किसी की पढ़ ली, कभी किसी की पढ़ ली, कभी किसी और क्लास सुन ली, कुछ नहीं, बस बाबा और मुरली, बस बाबा और मुरली, ये सच्चा, ये दो ही सत्य है, बाबा और मुरली, तीसरा कुछ भी नहीं। पहले मुझे शौक था पढ़ने का, किताब क्लासेस सुनने का भी, कभी किसी, कभी किसी की, कभी बस बाबा। और अन्न, अन्न भी बस बाबा की याद में बना, बाबा की याद में खाना। और खाली मुख का भोजन नहीं, आंखों का भोजन क्या है, कान का भोजन क्या है, ऐसी जगह जाके श्वास लेना जहां पर गलत बात होती है, वहां भी श्वास ले लेना। ऐसे भाई मंडल जाके इतनी ये अन्न, यहां का भी तो अन्न ना, कानों का भी तो अन्न है, मुख का भी तो भोजन है, आंखों का भी भोजन, नाक का भी तो भोजन है, नहीं है इसे कहेंगे। और फिर दैवी गुणों की धारणा, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, सभ्यता, है ना, अंतर्मुखता, वैर की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, ये तो बेसिक 14 गुण है ब्राह्मणों के, धारणा वाले, एकांतवासी, एकाग्रता, एक नामी, वैत्स एक नामी, एकमत, एकता और एक रस, ये 14 गुण तो ब्राह्मणों के गुण हैं, दैवी गुणों के धारणा बनाने के, तब बाद में दैवी गुण धारणा होने शुरू हुए। ये हमारे जैसे जीवन में प्रैक्टिकल में आ जावे तो ये है ब्रह्मचारी, पावरफुल अमृत वेला, बीज रूप स्थिति वाला अमृत वेला। मुरली सारा दिन बजती रही, मैं तो तब से मुरली जेब में रखनी शुरू की, सारा दिन मुरली मुरली बस मुरली, और कुछ है ही नहीं ना, मुरली ही सब कुछ है। और कहोगे क्या फिर काम नहीं करें घर पे, सेंटर पे काम नहीं करें, मैं हॉस्पिटल पेशेंट नहीं देखूं, ये देखें बहुत अच्छे होते हैं पेशेंट, तो अपने आप ही देखे जाते हैं, काम सारे एक्यूरेट होते हैं, अपने आप ही टचिंग आ जाती है, ऐसे बीमारी दूर से देखने में बिना एक्सरे के भी समझ में आ जाती है, इलाज भी समझ में आ जाता है। जितना साफ होते जाओगे ना सामने सामने, आपका एक्सरे सीटी स्कैन MRI से तो बेटर आपको पता लग जाएगा बीमारी का, इसके मन में क्या है, कैसे है, क्यों बीमारी आई, पता लग जाएगा। मेरी बात खाली डॉक्टर की बात नहीं, आप लोगों की बात भी है। जैसे ब्रह्मा बाबा को सब कुछ पता लगता, दादी बड़ी दादी जाती थी, कोमा में था पेशेंट, एक थे माउंट आबू के कॉन्ट्रैक्टर, ब्रह्मा कुमार के खिलाफ बहुत उन्होंने बहुत गलत काम किए थे, कई केस कर रखे थे कोर्ट में, उसको हार्ट अटैक आया, बेहोश हो गया, 20 दिन तक कोमा में था। दादी ने मुझे मुरली के बारे में कहा, गुप्ता जी कोई पेशेंट सीरियस है, तब मैंने कहा दादी आज पेशेंट से पेशेंट है, बहुत सीरियस हालत में मरने वाला कॉन्ट्रैक्टर है, दादी आएगी। दादी आई, उसके सिर पे हाथ रखा, अग्रवाल जी दो बार बोला, बाबू जी करके बोला, तो वो कोमा में ही था, कितने दिन से कोमा, हमने बता दिया मरने वाला है, अभी जाने वाला। और उसने 10 बजे आंख, 11 बजे दादी आई थी, एक घंटे बाद उसने थोड़ी थोड़ी आंखें खोली, कोमा में था, आंख खोली, और फिर वो धीरे 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 वो अगले दिन उसको वेंटिलेटर से निकाल दिया हमने, मशीन पे था ना, सांस मशीन से धीरे धीरे, और ठीक हो गए। ऑफिस में अनुभव सुना, जब होश में आने के बाद बोला, जब मैं इसमें से ना सान में बाबा की चित्र था, उसमें से एक धोती वाला बाबा निकला, मेरे माथे पर हाथ रखे गया, और फिर वो ठीक हो गया। उसने इतनी सेवा की, उसके बाद इतनी सेवा की, सारे जा जाके अपने संस्थाओं में जाके उसने इतने ब्रह्मा कुमारी के सारे केस तो वापिस कर लिए कोर्ट में जाके, और इतनी महिमा की, सारा पाप कर्म उतार लिया उसने। ऐसी स्थिति है, इतनी पवित्रता हमारी है, इस लेवल की पवित्रता, अमृत वेला, मुरली, सारा दिन मुरली बजती रहे अंदर। दादी जानकर कैसे थी, सारा दिन मुरली बजती रही, सारा दिन मुरली बजती थी, श्वासों श्वास मुरली बजती थी उसको, ये नहीं कि बस मुरली एक बार नहीं, सारा दिन टेंशन, सारा दिन बाबा की मुरली का मनन चिंतन मंथन से, बस साधन डिवाइस रियलाइज चलता रहे, सच्चे दिल से महसूस करते रहो, चिंतन चलता रहे। और फिर सोने के समय पोता मेल नहीं खाली, हर समय पोता मेल देते रहो, हर समय पोता मेल देते रहो। टीचर मैंने को बोल रहा हूं मैं, ठीक है, वैसे मैं एक स्टूडेंट हूं, आप टीचर हैं, पर मैंने देखा है पिछले कई सालों में कि सचमुच में हमें वो टीचर बहनों का क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, मुझे अपना पुरुषार्थ क्या लगता है। अब देखा जो सही चार्ट है ना हमारा, घंटे घंटे याद का चार्ट ना, अभी तो मैंने 5 बजे तक का भरा है ना, पर हर घंटे बाबा की याद में मैं कितने मिनट रहा है ना, ऐसी स्थिति बनाई। देखो ये याद का चार्ट है ना, हर घंटे बाबा की याद का, अभी मैंने 5 बजे तक का भरा हुआ है, अभी 7 बजे भरूंगा यहां से फ्री हूंगा तो हर घंटे याद दिनचर्या का चार्ट उसका मेंटेन करूं, 480 मिनट होना कोई मुश्किल सहज बात नहीं है। सच्ची याद, सचमुच बाप की गोद का अनुभव हो, बाबा के साथ हमारी रूढ़ियां हो रही है, बाबा के साथ हम ऐसा फील करें, एनर्जी तभी तो हमारी बदलेगी अंदर से, कैसे बदलेगी। ऐसी पवित्रता, जब शांति, जब ऐसी पवित्रता आएगी तो शांति माना अब सारी पास, इस घड़ी से पहले इस घड़ी में क्या हुआ फुल स्टॉप लग जाएगा। शांति माना क्या होता है, बीइंग इन द प्रेजेंट, एक सेकंड पहले जो उसका वो भी संकल्प ना चले, फुल स्टॉप करके एक सेकंड में अपने सत्य में टिके, परम सत्य बाप से कंबाइंड होके हम कर्म करें, इसको बोलते शांति। वही विचार है जो होने वाला है, फालतू विचार ना है, ना भविष्य का ना पास्ट का। इसलिए कहते आत्मा का स्वधर्म शांति है। अगर वर्तमान का विचार, मैं आत्मा परमात्मा से कंबाइंड हूं, ये विचार है तो हर काम सिद्ध है ना, यही तो हमारा धर्म है, यही तो आत्मा का धर्म है, इसी के आधार पर सत्युग बनता है ना, जो संकल्प करते हो जाता है ना। बड़ी दादी को देखो, बड़ी दादी जो सोचती थी हो जाता था ना, लाखों की सेवा हुई नहीं हुई, गांव गांव में सेवा हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई। और कितनी ऐसे हुई जो ब्रह्मा बाबा ने संकल्प किया, आज हो रहे नहीं हो रहे, सिद्ध नहीं हो रहे, हुए ना मुरली में, जो आया कब आया, आज से 50 साल पहले आया, 60 साल पहले आया, 60 साल पहले बाबा को आया, और आज सारे बात हो रही है, कैसे हो रही है। विदेश में सेवा आएगी, विदेश वाले इधर आएंगे, विदेश में तुम जाओगे सेवा करो, कैसे कैसे हो गया। तो इसे बोलते शांति। जब शांति आ गई ना, तो फिर बाबा के साथ रहते ना तो सबको एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। गाली देने वाला ज्यादा प्यारा लगता है, इंसल्ट करने वाला ज्यादा प्यारा लगता है। बड़ी दादी को हमने देखा था कैसे इंसल्ट करने वाले, तंग करने वाले, बाबा को तो सुना हुआ है, पर दादी को पर्सनली देखा था, दादी को कैसे गलत बोलने वाले लोग भी दादी उनकी इतनी केयर करते, क्या था उनका प्यार, आप सबको अनुभव है नहीं है, अनुभव है कि नहीं, कितना प्यार करते थे, कितनी केयर करती थी। उसके पर लॉ नहीं था, लवफुल लॉ था, प्यार ही प्यार था, लॉ भी ऐसा लगता था लॉ नहीं है, प्यार ही प्यार। तो जब ये ऐसा प्यार सबके प्रति आता ना, तब दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होती है, जो बचपन की गिफ्ट है ना हमारी ब्राह्मण जन्म की, दिव्य रूपी बुद्धि रूपी लिफ्ट जब एक्टिव हो जाती है तो हम सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की सार रूपी गोद में पहुंच जाते हैं। तब हमारा सूक्ष्म शरीर तैयार होता है, सूक्ष्म शरीर बनाना पड़ता है, बनता नहीं है, होता नहीं है, बनाना पड़ता है। मन ही हमारा सूक्ष्म शरीर है। जब मन में ज्ञान ऐसे सत्य की समझ आ जावे, पवित्र हो जाए, पवित्रता आ जावे विचारों में, भावनाओं में, वृत्ति स्मृति में, तब 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 हमारा सूक्ष्म शरीर क्या बनता है, लाइट माना, एकदम लाइट माना, हल्का हो जाता है। सूक्ष्म शरीर सारे शरीर में फैला हुआ है, इसलिए मरने से ही, जब तक देह, मैंने देखा ना सूक्ष्म शरीर में, जब मैं ऊपर गया ना, मरने के बाद ही सूक्ष्म शरीर निकला। जब देह और देह की दुनिया से मरते हो ना, प्रैक्टिकल में मरजीवा बनते हो ना ये दुनिया से, तब सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। जीते जी सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलना तो क्या करोगे, सूक्ष्म वतन में जाना तो क्या करोगे। मन में ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं जिसमें जरा भी देहभान ना हो, देहभिमान ना हो, देहभान के संबंध संपर्क का भान ना हो, पदार्थों का भान ना हो, किसी भी आसुरी स्वभाव 5 विकारों के किसी अंश वंश का भान ना हो, किसी आलस्य अलबेलेपन का भान ना हो, दोष दर्शन बदलने की भावना का भान ना हो, शक अनुमान ना हो, चिंता भय ना हो, निर्भय हो एकदम, जल्दीबाजी ना हो, धैर्यता हो, पेशेंस हो ना, ईर्ष्या द्वेष ना हो, विश्व कल्याणकारी का भान हो। जब ऐसी स्थिति होती है ना मन की, विचार भावनाओं में, तब हमारा ट्रांसपेरेंट शरीर बनता है। जैसे बताया ट्रांसपेरेंट, मुझे महसूस हुआ मेरे ट्रांसपेरेंट आर पार है, शरीर तो है पर ट्रांसपेरेंट है, तब ऐसा भान बनता है, तब सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा कहां पहुंच जाती है, सूक्ष्म वतन में बाप दादा की सार रूपी गोद में पहुंच जाती है। इसको बोलते विस्तार को सार, इसको बोलते अतीन्द्रिय सुख, तब बाबा से फील होता है हाँ पाना था सुपा दिया काम के बाकी, सर्व प्राप्तियां हो गई। प्रैक्टिकल में फील होता है, आप विजुलाइज नहीं कर रहे हो, पहले तो मैं विजुलाइज करता था बाबा ऐसे ऐसे कर रहा है, फिर प्रैक्टिकल में मुझे फील होने लगा हाँ बाबा की गोद में गया, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही, बहुत वंडरफुल, बहुत बस बाबा कुछ नहीं चाहिए, संतुष्ट हो गया, स्वयं से भी संतुष्ट, बाप से भी संतुष्ट, ड्रामा से भी संतुष्ट, परिवार से भी संतुष्ट, और इच्छा मात्र कुछ नहीं चाहिए, बस इच्छा मात्र में भी दे। उसके बाद लवलीन स्थिति आती है, लवलीन माने जो आजकल अव्यक्त शरीर ना, आनंद की स्थिति आती है, तब आनंद की, तब आपके सारे हार्मोन ठीक हो जाते हैं अपने आप, थायराइड डायबिटीज अपने आप ही ठीक हो जाती है। जब ऐसी स्थिति आती है सुखी अनुभूति आती है, तो लीवर ठीक हो जाता है, लीवर का काम है डिटॉक्स करना, सारे पॉइजन को बाहर निकालना बॉडी से, तब आते काम करने लगती है, आंतों में गंदगी चिपक जाती है, फिर खाने की इच्छा खत्म हो जाती है, ये खा लूं वो खा लूं, इच्छा ही नहीं, बस सिंपल खाया, थोड़ा सा खाया, नाम मात्र खाया, कोई मैं स्पेशल चीज खाऊं नहीं, मुझे नहीं खानी, ये रासिक चीज है, मुझे नहीं खाना रासिक, मुझे सात्विक भोजन खाना है, फल खाना है, सब्जी खाना है, सलाद खाना है, रोटी अंकुरित खाना है, रोटी सब्जी खानी है, दूध दही ले ली थोड़ी सी, वो भी आसक्ति से नहीं, थोड़ा सा नाम मात्र लिया, थोड़ा सा खाया, बाबा की याद में खाया, हबज से नहीं, थोड़ा सा खाना है, थोड़ा सा पेट भर के खाना है, पर आसक्ति से नहीं खाना है, रासिक भोजन नहीं, पराठा पकौड़ा समोसा नहीं, भजिया नहीं, पानीपुरी नहीं, भेलपुरी नहीं, है ना, ये नहीं, अचार नहीं, है ना, उत्तेजना पैदा करना, चाय कॉफी नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, पता है कोल्ड ड्रिंक कितनी होती है, ये जीरो पीता ना, जीरो सेंटर पे आजकल तो आने लगा, जीरो भी आने लगा ना, उसमें बहुत कॉफी होती है, कैफीन होती है, एक कोको कोला में 6 कप जितनी कैफीन होती है, 6 कप कॉफी जितनी कैफीन होती है, इससे थोड़ा अच्छा लगता है पर नुकसान है, बहुत नुकसान है, फिर तो योग लगेगा नहीं, चाय कॉफी छोड़ दो, बाबा कभी चाय, बाबा ने कभी चाय नहीं पिए, कभी कॉफी नहीं पिए, ब्रह्मा बाबा ने कभी चाय कॉफी नहीं पी, ऐसी स्थिति बनाओ ना, तब तब बाबा, तब प्रैक्टिकली ज्ञान का सागर, इस ज्ञान के सागर में मैं आत्मा में सूक्ष्म शरीर समाई हुई हूं, तो क्या ब्रेन का सारा माइग्रेन खत्म हो जाएगा, पवित्रता होगी तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आंखों का चश्मा उतर जाएगा, ठीक है, कान ठीक हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे, कोई बार बार जुकाम नहीं होगा, खांसी नहीं होगी, है ना, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग, कैंसर भी रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, राइट, ठीक है ना, गठिया भी ठीक हो जाएगा, ये इम्यून सिस्टम से होता है गठिया भी, शांति से लंग्स भी, दमा भी ठीक हो जाएगा, प्रेम से हार्ट के ब्लॉकेज, ऐसा प्यार, सबके लिए प्यार, कुछ गाली देने वाला और महिमा करने वाला दोनों बराबर लगे, दोनों की बराबर केयर करो, इंसल्ट करने वाले की ज्यादा केयर करो। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बड़ी दादी समझाती थी, कई बार ना हम हॉस्पिटल में जब नए नए आए तो लोग क्या आपस में ईर्ष्या द्वेष होती है ना, डॉक्टरों की भी होती है, नए नए आया था तो मेरे को लोग ज्यादा पूछते थे, तो दूसरे डॉक्टर कहते ये इसको ज्यादा क्यों पूछते, मेरे को पहले पूछते थे, इसको ज्यादा पूछते क्यों, तो आपस में करते ना लोग क्वेश्चन करते, तो मैं कहती ऐसा क्यों होता है, ऐसे तो मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं तो अपना काम करता हूँ सारा दिन रात, मैं पेशेंट देखता रहता हूँ, मशीनें नहीं तो भी हाथ से पकड़ के नर्वस बैठा रहता हूँ, आप कहते इसको बचाना ही बचाना है, इसको बचाना ही बचाना, तो मैं बैठा रहता हूँ, ना रात देखता हूँ ना दिन देखता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसे को क्यों करते हैं, तो दादी ने कहा नहीं, ये तुम्हारे अपने कर्मों का फल है उस आत्मा के साथ, तुम्हें उसको सहन करके समझना है, उसकी ज्यादा केयर करो, वही तुम्हारा सबसे ऐसा दोस्त बनेगा, भजन में तुम्हारा साथी बनेगा, वापस इसलिए करता है, इसलिए करती है क्योंकि उसने तुम्हारे साथ रहा हुआ है, तुमने गलत किया इसलिए वो बराबर करने के लिए फ्रिक्शन लेस हो जाए ना, तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है, अगले जन्म का साथी तुम्हारा वही है। सुनो दादी एग्जाम्पल मैं क्लास में नहीं बताता हूँ, क्या आप टीचर मैंने सभी तो बताया, फिर भी बता देता हूँ, दादी कहते मेरे को सहन नहीं करना पड़ता क्या, आप सब जानते होंगे, नहीं बोलता हूँ, ठीक है, हर लेवल पे सहन करना पड़ता था, दादी को भी बहुत सहन करना पड़ता था, हालांकि चाहती तो दादी बदल सकती थी किसी को भी, हटा सकती थी, पर दादी ने कभी नहीं किया, लॉ अपने हाथ में नहीं दिया कभी, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी से इत्यादि, कभी लॉ हाथ में लिया बताओ? बड़ी बड़ी बहनें बैठी हैं, लिया जी? कभी नहीं लिया ना, कभी नहीं लिया। कभी कोई बात होती है, दादी मेरे को कोई डांट लगाता है ना पीछे से, दादी पीछे उसके पीछे खड़ी होती थी, तो दादी मेरे को पीछे से इशारा करती थी, चुप रहो, सहन करके संभालो, है ना। वो डांट मना उल्टा सीधा बोल देते थे कभी कभी, तो मैं तो सोचता, मैं सोचता मैं भी सामने जवाब दूं, पीछे से हाथ ऐसे करके ना, दादी थोड़ी लंबी थी उनसे, ऐसे ऐसे करके, ये ऐसा करना। तो ऐसा जब करोगे ना तो ये आएगा, तब तब क्या होगा, तब अश्री स्थिति आएगी, आनंद लवलीन रहने तो अश्री स्थिति आएगी, अश्री आएगी तो फिर उसके बाद अश्री माना देवान से अलग पहुंचे, तब थोड़ा थोड़ा विक्रम विनाशन, फिर बाद में मैंपन मेरापन खत्म होगा, तब मैंपन मेरापन खत्म होगा, और जब मैंपन तो निराकारी स्थिति आएगी, निराकारी बनकर निराकारी बाप से कंबाइंड होंगे ना, जब मैंपन मेरे पास त्याग होगा तब निराकारी स्थिति आएगी, तब आपके निर्विकारी माना, तब आपके विक्रम क्या होगा, तब आपके क्या खत्म होना शुरू होगा, ये जो विकार है ना काम क्रोध लोम भयंकर का अंश खत्म होना शुरू। नहीं तो अभी तक 40 साल के बाद भी कभी कभी चिड़चिड़ापन आ जाता है, इरिटेट हो जाता है, थोड़ा कुछ इच्छा पैदा हो जाती है ना, थोड़ा थोड़ा मोह हो जाता है, कभी लगाव हो जाता है, कभी अहंकार भी आ जाता है, फिर खत्म होगा। मैं देखा 50 साल के बाद भी, बाबा से पूछा था एक दिन, बाबा ने कहा नहीं बच्चे निराकारी, निराकारी में मैंपन मेरापन जरा भी नहीं है, तब निराकार बाप से कंबाइंड, तब बाबा तब, और तब आपके बीजरू मास्टर बीजरू बन के जब कल वृक्ष जड़ में बैठ के बाप भी सारे कलच को चकाश दोगे ना, जब सबको अपना समझोगे ना, तब सहन करने की शक्ति आएगी, तब ऐसे केमिकल भी पैदा हो जाएंगे, शरीर में कुछ हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा, हार्ट में दर्द हो रहा होगा, पेट में गैस बन रही होगी, पेट में दर्द हो रहा होगा, घुटने काम नहीं कर रहे, घुटने टेढ़े हुए हैं, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराओ, कमर खराब हो गई, डिस्क निकल गई, कमर में शाटिका हो रहा है, करंट आ रही है, दवाई खाते हो नींद आती है जोर से, आपको पता होगा जिनको शियाटिका हुआ, दवाई खाते हो नींद आती है ना जोर से, अमृत वेला भी अच्छा नहीं होता है, तो नींद कैसे, फिर अमृत वेला कैसे करेंगे? नहीं, वो बाबा कहता है बच्चे ऐसी स्थिति में रहोगे ना तो क्या होगा, ये दर्द भी खत्म, ऐसा फील होगा दर्द है ही नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं होगा, खत्म हो जाता है, तब ये सारे दर्द खत्म, जो भी एक के बाद, अब ये नहीं कि बीमारी लास्ट बीमारी नहीं है, उसके बाद भी आएंगे, उसके बाद भी आएंगे, तो आती रहेंगी, आती रहेंगी बीमारी और जाती रहेंगी, है ना, अंत तक आती रहेंगे, तो आएंगी किंतु वो क्या करेंगे, हमें अनुभव की अथॉरिटी बनाती जाएंगी। तो मुझे याद है जब मैंने करना शुरू किया ना ये वाला, तो 3 दिन के बाद ही मेरा, तीसरे दिन ही मुझे नींद आ गई, सीधा सो गया, छाती में हल्कापन आ गया और बाजू ठीक हो गई, और फिर मेरा धीरे धीरे हार्ट का धड़कन ठीक हो गई, और दोबारा जब इको कराया सितंबर मास में, तो मेरे हार्ट की दीवारें नॉर्मल, मेरी हार्ट की पंपिंग 90% थी, 90% मैंने हार्ट मैंने यूं नहीं जोड़ता था, यूं ऐसे होता है, यूं होता ना, यूं ही होता है, तो इसलिए मेरे को हार्ट धड़कन में दर्द होता था, इसलिए मेरी छाती बहुत भारी रहती थी, तो हार्ट की धड़कन भी ठीक हो गई, हार्ट की पंपिंग 65% आ गई, वो रास्ता भी फूट गया, दीवारें भी नॉर्मल हो गई, तब गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट पास हुआ, और बड़ी दादी ने फिर यही सिखाया जिस दिन प्रोजेक्ट पास हुआ और प्रोग्राम लॉन्च हुआ, कि गुप्ता जी पहले खुद करना, खान पान का भी धारणा खुद करना। मैं कहता दी बाबा का भोग तो खाते हैं ना, टोली तो खाते ना आप देते, नहीं नहीं आप खाओगे तो वो भी खाएंगे ना, तो तब से मेरा भोग खाना भी बंद हो गया। दादी ने कहा यहां से खाना, यहां से मत खाना, खाली भाषण से कोई सुधरता नहीं है, भाषण से कोई परिवर्तन नहीं होता है, कर्मों में कमिटमेंट होनी चाहिए, अपने कर्म में हर कर्म में सिद्धि स्वरूप होना चाहिए, है ना, और गुप्त रहना, गुप्त रहना माना कभी भी जब बाबा के बच्चे जो जीव इसमें रहते हैं, क्या किसमें रहते हैं, जड़ में रहते हैं ना, गुप्त रहते हैं, जो गुप्त बाबा के साथ रहते हैं वही भविष्य में प्रत्यक्ष होते हैं, भविष्य प्रत्यक्ष माना कभी सत्यों में जाके प्रत्यक्ष होंगे, अभी भी अंत में प्रत्यक्ष होंगे, तो पर गुप्त रहना, कभी भी अपनी प्रसिद्धि की कोशिश नहीं करना, अंदर रहना, तो अंतर्मुखी रहना, और क्या करना, कर्म कहानी देखो रोज, आज तक मैं लेटर लिखता हूं बाबा को, रोज चार्ट भरता हूं, रोज मुरली पढ़ता हूं, सोने के पहले मुरली पढ़ के पोता मेल देके सोता हूं, और बाबा के साथ ऐसा ऐसा तब तब ऐसी स्थिति बनेगी, तब 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 क्या होगा, तब आपका देखो दिल है ना, दिल है एक सत्य विवेक है, सत्य को प्रकट शक्ति है, फिर यथार्थ निर्णय करने शक्ति से दिव्य बुद्धि कहते हैं, तब हमारा चित्त है सबकॉन्शियस माइंड है, तब चित्त हमारा शांत एकाग्र आनंदमय होता है, तब चिंतन मुरलिका चलता है, तब फाइलें खुलती हैं, सतो प्रधान फाइलें खुलती हैं, पिछले कल्प की ब्राह्मण श्रेष्ठा देवता सब की फाइलें खुलती हैं, और तब हमारे अंदर रूहानी वृत्ति बनती है, रूहानी दृष्टि सतो प्रधान वृत्ति दृष्टि वायुमंडल बनता है, शुभ भावना शुभ कामना का एक ऐसा वायुमंडल बन जाता है, उसमें बैठ के जब मुरली को पढ़ते हो ना, या मुरली अपने आप बजती रहती है, साथ मुरली का चिंतन चलता रहता है, चिंतन से भावना पैदा होती है, भावना से वाइब्रेशन बाबा तक जाते हैं, और बाबा से मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आते हैं, और मैं उसी में रहता हूँ, तब तक पंखा घूम रहा ना, पंखुड़ी नजर नहीं आ रही अभी, पर नीचे ठंडी हवा आ रही, तब ऐसे मन में ये बाबा के प्रति जो बाबा की बातें घूमती है ना, तो वृत्ति बने सर्कल वृत्त बन जाता है, और फिर देवान खत्म, देवमान खत्म, संबंध संपर्क खत्म, पदार्थ खत्म, और आसुरी स्वभाव संस्कार खत्म, और उस वो वायुमंडल बनता ना, उसमें रहकर कर्म करो, जब तक प्रैक्टिकल कर्म नहीं करते तब तक रिकॉर्ड नहीं होता है, नए संस्कार कैसे बनेंगे, नए संस्कार व्यवहार कैसे बदलेगा, मेरे व्यवहार में मिठास कब आएगी, मेरे व्यवहार में सरलता कब आएगी, मेरे व्यवहार में संतुष्टता कब आएगी, दृढ़ता कब आएगी, वो तभी आएगी जब मैं प्रैक्टिकल में क्या करूंगा, कर्म करने से रिकॉर्डिंग, मैंने अनुभव किया योग में बैठ के बहुत अच्छा, अपने भट्टी की बहुत अच्छे बाबा के साथ के अनुभव किए, पर उसी में रह करके फिर कर्म करोगे ना, देखना सुनना बोलना खाना पीना करोगे व्यवहार में, है ना, तब व्यवहार नया रिकॉर्ड होगा, तब हमारा व्यवहार देवताओं जैसा बनेगा, तब दैवी गुण हमारे व्यवहार में आएंगे, तब व्यवहार बदलेगा तो आहार प्रैक्टिकल व्यवहार बदलेगा, तब विहार बदलेगा। टाइम पूरा हो गया, नहीं बस मैं कर रहा हूँ पूरा, बस एक मिनट, हाँ मुझे पता है, मुझे पता है बस मैं पूरा कर दिया, तब हम कर्मेंद्रीय जीत बनेंगे, तब माया जीत प्रकृति जीत बनेंगे, तब कर्मातीत बनेंगे, तब बाबा के साथ बीज रूप बनकर क्लब में बीज रूप सारे क्लब से काश देंगे, तब रियल में प्रैक्टिकल चेंज होगा, परिवर्तन होगा, राइट। तो क्या करना है, दिल सच्ची साफ बनाओ, तब विवेक जागृत, तब निर्णय शक्ति दिव्य, तब चित्त शांत एकाग्रमय, तब मुरली का अपने आप मुरली बजती रहा करेगी, तब हमारा सर्कल बनेगा, वृत्त बनेगा, दृष्टि बनेगी, वायुमंडल बनेगा, तब रिकॉर्डिंग होगी। ओम शांति। ताले नहीं बजाता, ताले बजाने की बात नहीं है, पर मैंने कहा ये जो मैं आपको अपना अनुभव भी सुना दूं तो बहुत है, यही है स्वस्थ बनने का तरीका, स्वस्थ मन और स्वस्थ तन, खुशनुमा मन बनने का तरीका, राइट।
थैंक यू भाई साहब, हमने शायद पहली बार ही आपका जीवन कहानी हमने तो सुना और बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइटली आपने जो सारी बातें बताई लेकिन बहुत गुह्य, बहुत महीन और बहुत अभ्यास करने जैसी, तो बहुत बहुत थैंक्स है। अभी एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे।
तो आप घंटे घंटे यार का चार्ट चाहिए ना, इनको दे सकते हो, मैंने लेके आया था, जो मैं भरता हूँ वही लेके आया था, मैं आज तक भरता हूँ, घंटे घंटे याद का चार्ट, राइट, भरना अच्छा लगेगा, देखो एक महीने में कर्मातीत हो जाओगे, ठीक है।